சரி நான் நமஸ்தே சார்பு செய்தி கௌரவாணி பிரச்சாரி நிர்ணயமாகி பார்த்தார். On this auspicious occasion of your divine appearance, we are grateful for the opportunity to speak a few words in the praise of your divine glory and mercy. Srila Prabhupada, your kindness knows no limits because you have given us so many spiritual gems. You have mercifully bestowed upon us gems of such value that it is hard to calculate your worth. First and foremost, you have given us the holy name of Krishna in the form of Mahamantra. What the sages so to achieve in lifetimes, you have made easily available to us, giving us the chanting of Hare Krishna Mahamantra. Although the great liberated souls have taken complete shelter of the holy name, which is glorified by the Upanishads, we still find excuse not to take shelter of the holy name. The holy name is so attractive that all the sages chant it continuously. Chanting the holy name is so powerful that can relieve all our suffering. Srila Prabhupada, you describe how the death is due to giver of holy name can deliver us into existence. In the dark of the night, we may fear many things like tigers, but as soon as there is a little hint of sunlight, we are no longer afraid. In the same way, even if a glint of reflection of pure chanting holy name raises in our heart, we no longer have to fear Maya. We never read that meditation and impersonal Brahman will free us from the effects of the past sins. Yet the Shastras declare the power of the holy name can get rid of the chanters of all the sins that you have made us in lifetime. Srila Prabhupada, on this blessed day of your appearance, we seek your mercy so that our attraction for many names of Krishna may rise. Names of Krishna that are in relation to his beloved devotees are so dear to him and his pure devotees than his pure devotees. Names like Nandanandana and Yashodanandana make the heart of the pure devotee dance with joy. Srila Prabhupada, it is you who help us chant ecstasy due to attraction to holy names. The worship of deity in the temple is a wonderful gift of yours to us, a gift of unimaginable splendor. Still, we advise us to always chant holy names by worshipping the deity. Srila Prabhupada, this holy name you have given us brings us untold blessings. When we chant the devotee, desire to dance arises in our hearts and we forget all our material anger. By this chanting, you have opened the door to spiritual existence so that we can enter our real world. Srila Prabhupada, your chanting is as attractive as the music from Narayana's Veena. Your chanting has captured our heart and continues to be thousands of good hearted souls in this unique loving world. Sri Chaitanya Mahaprabhu Sankirtan movement. That brings us to the next shift we have given up, the service to Chaitanya Mahaprabhu, the son of Sachi Devi. What is it, an amazing life we have had, all because you have so kindly given us service to Sankirtan movement. Sri Chaitanya Mahaprabhu summarized the Sankirtan movement when he explained to Prakashan Saraswati what his spiritual masters told him. Nacha Bhava Bhakta Samvikara Sankirtan. Krishna Upadesh Kare Sarvajana. Ishwara respect to Sri Chaitanya Mahaprabhu. My dear child, continue dancing, chanting, and performing sankirtan in association with devotees. Furthermore, go out and reach the value of chanting in the Hare Krishna Mahamantra. For by this process, you will be able to deliver all the conditioned souls. From this verse, you can understand the essence of Sri Chaitanya Mahaprabhu's sankirtan movement. Your desire is that we dance and chant in association with devotees and try to spread the message of Lord to deliver all conditions of devotees. Your faith in the words of your spiritual master to cause amazing things to happen. Of course, you didn't want to take any credit for them. You built the Krishna Balarama temple because you wanted to give everyone a chance to render devotion to service Krishna and Vrindavan. You never thought of any moment for glory of yourself. Your motive was to please your spiritual masters by spreading the Sankirtan mission of Lord Chaitanya. You are one of the greatest examples of devotees who are not satisfied simply by becoming perfect temples, but rather want to see others take the chanting of the holy names of the Lord and perfect their lives. He perfectly embodied the role of Prahlad Maharaj. Mahavod Vidhi Parat Duratya Vitar Jaya Sat Vidya Gayana Mahamrita Madna Chitta So Cheta To Vimukta Cheta Indriya Tapata Maya Tatsya Bhum Utprahoto Vimukyan My dear Lord, I have no problem and then want no rejection from you because I am quite satisfied to chant your holy name. This is sufficient for me because whenever I chant, I immediately emerge in an ocean of transcendence. I only learn to see others rest of this pure love. They are rotting in the material activities for transient material pleasure and spoiling their lives, toiling all day and night simply for transient education. With no attachment to love for God. I am simply lamenting for them and devising various plans to deliver them in such a fire. Srimad Bhagavatam has been said by the pastor of Chaitanya Chaitanya Chaitanya. This verse by Sri Prahlad Maharaj perfectly captures the mood. So far, you wish patiently you are waiting for us to catch up the same spirit. He explained to us that Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur used to say, even at the expense of all the properties, temples and matas that I have, if you convert even one person into a pure body, my vision will be fulfilled. If you get caught up in opening temples and collecting money to maintain them and forget that what you really want, then you have missed this point. The spiritual master becomes happy when he sees that the disciples are following regulated chanting the prescribed number of rounds and making advancement in Krishna consciousness. Srila Prabhupada, you always exhibited your complete attachment to material enjoyment and at the same time accepted everything in connection with service to Krishna. Thus you perfectly embodied the principles of Vaikuntha Vairagya. Nāpattasya viśāne tātam śrīṅcitaḥ vandana viṣṭaḥ mandiye svayāti. Things should be accepted for the service of Krishna and not for personal sense of gratification. When I accept something without attachment and accept it because it's related to Krishna, one's renunciation is called Yukta Vairagya. Srimad Bhagavatam says, Murdhyam Yatkitam Anuvat Sahasra Murdho Bhubolam Sharati Sahasi Samusra Kipram Anyatat Arivinat Arimitta Vikarmayasya Bhumna Ko Vidya Ad Dhanayi Sahasra Jivha. Because the Lord is unlimited, no one can estimate His power. The entire universe, filled with many great mountains, rivers, oceans, trees and living animals, He is resting just like an atom on of His many thousands of feet. He said, even the thousands of suns, who can describe similarly, Srila Prabhupada, we do not have the power to describe even a small fraction of His glory. Srila Prabhupada, the vision of how to redirect the present and guided society is very profound and far-reaching. When Sri Chaitanya Mahaprabhu predicted that in the near future the day would come when the holy names of three would be chanted in every town and village, few believed that this could ever happen. Most part was impossible. Although your godbrother had such doubts, you had a clear and a undeterred conviction that by the grace of Guru and Krishna, this was indeed possible. As a soul totally surrendered to the words and the desires of your spiritual master, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, you have never doubted the holy name of the spread worldwide. And at a grand age, you ventured halfway across to undertake a mission impossible, to take through the words of both your Guru Maharaj and Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srila Prabhupada, by Sri Jayada Giridhar's mercy, we are expecting the complete construction of the new temple and the Lordship, of therefore the Lordship by Hardy this year. What follows is the yearly preaching report of the Road Branch to International Study of Krishna Consciousness. Preaching to you. Once a month we conduct a festival for college boys for the Vasana, more than 100 boys for ladies for the Vasana. Teaching the children by your mercy, the devotees in your Yatra are planning to conduct value education classes for children. Four schools, Gaurika Plaza, Pandita, two schools. Apart from these efforts, we will be having vacation matches that focus on Bhagavad Gita for children, conducted at more than 21 places, including Virabha, Bodhidhi, Kandir, Jodhishwari, Shanghai, Kasari, Vaki, Kani, Prayan. Also, we conduct Vasayana competition. Students this year, about 600 students participate. Teaching the others, Ramachani, many grants and devotees of the Yatra, travel from Europe, Bodhidhi, Kandi, Raskar, Bhayangar, Kani, Bhavai, Kalyan, Mahatai, Vaki, so many places to present Krishna consciousness, both distribution. For the last year, many children girls, boys, college kids, boys, mothers, and boys started the distribution enthusiastically and tried to distribute in as many stations as possible in the world. Then all the yatras and handlers. The world then all the yatras, the road, coming, coming, going, the grass, and going, and building. She has all caused many of words, many of words, and effort to teach. But that may what we want, we want to please. But that may what we want, we will please you. Rather, may our words and efforts to those you who wish. This is the Korean idea. May our minds become one with your words, absorbed in your words, so that our efforts will always be those you would desire. May our mind be purified by taking shelter of you. Taking shelter of you is a answer to taking shelter of Krishna. And may our power of speech, instead of being engaged in words, so may be used. Always be engaged in chanting the holy names of Krishna. May we chant Hare Krishna and be happy. Make others happy by spreading and chanting the holy names. Please be merciful to us so that we can serve your instruction nicely. If you like to remain engaged in your devotional service, although you have no qualification for this engagement. Thank you, Shri Lord God, for your kind mercy upon us. Kindly forgive us our shortcomings and senses. We beg for your mercy so that we may all realize more deeply the designs of the scriptures or Chaitanya Mahaprabhu's Sangeet movement. There are absolutely no qualifications beyond but made up of your father's mercy. Thank you, Shri Prabhupada, for your selfless dedication to the cause of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Sri Acharya. You are a constant source of inspiration to so many devotees all over the world and to us as well. Shri Prabhupada, many of these needs upon us so that we can do something to satisfy you. For only when you feel the wish of our activities can be progress in devotional service. We pray to be installed as a particle of dust that you are looking for. Your insignificant, insignificant servant and installed in the world. Thank you.
किया जा सकता है या करना कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरे शब्दों में उसको वही बात को प्रस्तुत करना चाहता हूं, आप इतिहास में जिस आचार्य को देखना चाहते हो वो श्री अरविंद में देख सकते हो। तुलना तो एक बात हुआ, लेकिन तुलना की बात नहीं है। आपको जो जो आचार्य वैष्णव आचार्य लेके आएंगे, ब्रह्मा जी से लेके श्री अरविंद जी के आने तक, यानी इनके जो गुरु श्री अरविंद सिद्धांत सरस्वती शास्त्र, हर एक व्यक्ति का एक व्यक्तित्व होता है। नारद जी का एक व्यक्तित्व होता है, बालक आचार्य का व्यक्तित्व है, आचार्य का एक यूनिक एक विशेष व्यक्तित्व होता है। लेकिन श्री प्रभुपाद जी का व्यक्तित्व ऐसा है, आप जिन आचार्य को देखना चाहते हो या जिन आचार्य को गुण को देखना चाहते हो, वो सारे श्री प्रभुपाद के अंदर पाए जाते हैं। ये ऐसे मैं बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि आदत रहा है कि इन आचार्यों के ग्रंथों को पढ़ना शुरुआत से जैसे इस बात में जुड़ा हो सकते हैं। खास करके मैं पढ़ाई करता था भगवदगीता के इतिहास में, शिव प्रभुपाद जी भगवदगीता मेरे सामने थी। मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, कृष्णाचार्य ठाकुर, ये तीनों की टीका मेरे सामने थी, यानी तीन बुक्स सर्कल में, सभी सर्कल बुक में कृष्ण शिव प्रभुपाद का टीका। तो एक एक श्लोक पढ़ने के लिए कम से कम दो दिन लग जाते थे, क्योंकि सबका पढ़ना और इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, समय लगता है। तो समय मैंने देखा, रामानुजाचार्य टीका पढ़ो, बाद में मध्वाचार्य का टीका पढ़ो, ऐसा लगता है कि दोनों अलग है। मध्वाचार्य जो कहते हैं रामानुजाचार्य नहीं कहते, रामानुजाचार्य जो कहते हैं कृष्णाचार्य ठाकुर नहीं कहते। लेकिन अगर मध्वाचार्य का टीका पढ़ो, बाद में प्रभुपाद का टीका पढ़ो, ऐसा लगता है कि जो मध्वाचार्य कह रहे हैं प्रभुपाद जी कह रहे हैं। कृष्णाचार्य ठाकुर ने टीका पढ़ी है, उसके बाद प्रभुपाद की टीका पढ़ी, ऐसा लगता है कि कृष्णाचार्य ठाकुर जो कह रहे हैं प्रभुपाद जी कह रहे हैं। एक एक लाइन गीता भी बताने किसी चोरी कर देता है, एक एक लाइन को अंडरलाइन कर रहा था, ये जो है मध्वाचार्य बाल मध्वाचार्य का टीका पढ़िए, उसके बाद भोपाल जी टीका पढ़िए। मध्वाचार्य जो चार पांच भाष्य उनकी भाषा में चार पांच लाइन में जो कहते हैं, भोपाल जी अंग्रेजी भाषा जो सबसे निम्न भाषा माना जाता है उसमें एक लाइन में उसका पूरा सार ले लेते हैं। केवल सिद्धांत में नहीं है, केवल सिद्धांत में ही नहीं है, उनकी जीवनी है। फिर थोड़ा सा जीवनी के बारे में चर्चा करते हैं श्री प्रभुपाद जी और पहला सामान रहता है, क्योंकि ऐसा आचार्य मतलब आज तक अभी भी आचार्य मतलब रामानुजन, जैसे अगर गीता भाष्य यानी भागवत का टीका मतलब जो मूल टीका जो है श्रीधर स्वामी का, श्री चैतन्य महाप्रभु साहब ने स्वीकार किया, वैसे ये जो आचार्य शब्द मतलब रामानुजन का है। इससे हम देखते हैं कि ये जो प्रभुपाद जी को आचार्य पुकारते हैं, देखते हैं कि श्रीपाद रामानुजाचार्य जो जीवनी प्रभुपाद जी के जीवन में दिखाई पड़ता है। आप सबको मानते हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य बहुत प्रयास किया शेरमन का प्रचार करने के लिए, बहुत प्रचार किया, और उस समय एक दुष्ट राजा था। ये दुष्ट राजा शैव सिद्धांत का प्रचार करने का प्रयास कर रहा था, और उनको किसी ने कहा कि आप इतना शैव उसको माना चाहते हो, आपका प्रयास विफल रहेगा, जब तक रामानुजाचार्य रहेंगे तब तक आपका प्रयास विफल रहेगा, और रामानुजाचार्य को शैव बना दो क्या होगा, सारा आपके देश में सभी लोग शैव हो जाएंगे। तब राजा ने रामानुजाचार्य के सैनिकों को भेजा, रामानुजाचार्य से एक पत्र लिखा के आओ कि शिवजी ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, रामानुजाचार्य स्वीकार नहीं किए तो राजा ने आदेश दिया उनको पकड़ के लिया। लेकिन उनके शिष्य थे रामानुजाचार्य के, उनके नाम था पुरेश, उन्होंने रामानुजाचार्य की जीवन विषय को देखकर कहा कि आप मेरे वस्त्र ले लो। रामानुजाचार्य क्या किए, वो पुरेश का वस्त्र देखे, चुपचाप किसी को नजर में नहीं आते हुए श्रीपद रामानुजाचार्य तमिलनाडु से आ गए, कांचीपुरम और श्रीरंगम में उनका भेज था, वो कर्नाटक की ओर से। कर्नाटक में मैसूर के पास में एक जगह जिसका नाम है तिरुनारायणपुरम, यहाँ मेन कोर्ट है, उधर श्रीपाद रामानुजाचार्य 17 साल निवास करके उन्होंने श्री भाष्य का रचना प्रारंभ किया, अनेक ग्रंथों का रचना किया। और वास्तविक कारण श्रीपाद रामानुजाचार्य का प्रचार शुरू हुआ था मेल कोटे से। इससे श्रीपाद रामानुजाचार्य अंत में जो उनके जो 64 इंस्ट्रक्शन 72 इंस्ट्रक्शन 72 इंस्ट्रक्शन देने के बाद उसे उपदेश देने के बाद में साफ रूप में उन्होंने और अच्छी बातों को कहा। उनमें से ये थे, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, मेरा श्री भाग नहीं कर सकते हो, विधान दीवार नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम नेम कोटे जहाँ मैंने श्री भाष्य का रचना प्रारंभ किया वो एक दिन कम से कम रुको एक कुटिया में, ऐसा उन्होंने अंत में कहा। अभी देखिए श्रीलंकम जो है या तमिलनाडु जो है वो पूर्व में है और ये जो नेम कोटे कर्नाटक जो है पश्चिम में है। आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी कहां गए, पूर्व से पश्चिम गए और उधर से उन्होंने पूरा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संस्था या उनका पूरा स्थापना किया, प्रचार का वास्तविक प्रचार प्रभुपाद का लेकर शुरू हुआ। कितना स्ट्रगल किया प्रभुपाद ने, कितना बहुत संघर्ष किया इसी देश में शुरुआत में, लेकिन नहीं हो पाया। वो उल्टा क्रांति में आप देख सकते हैं उसके विरुद्ध अनेकों ने लोगों ने कार्य किया। इतना अंतर उनके गुरु बाहर भी साथ नहीं, श्रीपाद रामानुजाचार्य के साथ गए थे, उनके गुरु भाई उनके हेड पुजारी वो सोचते थे रामानुजाचार्य को मैं मार दूं। क्या हुआ, उनको पूर्व से पश्चिम की ओर जाना पड़ा। एक विशेष चीज है और उनकी जीवनी है, जब पूर्व से पश्चिम की ओर गए यानी मेलकोटे गए रामानुजाचार्य, किन लोगों से मिले थे? रामानुजाचार्य मिले थे आदिवासियों, अभी भी श्री वैष्णव में अगर आप मरवाज इत्यादि जाएंगे श्री वैष्णव ब्राह्मण मिलेंगे, अगर ये मेलकोटे का ब्राह्मण है बोलेंगे रोक लाते ऐसा बात करते, क्योंकि रामानुजाचार्य ने क्या किया, मेलकोटे के आदिवासियों को उन्होंने ब्राह्मण और आदिवासियों को ब्राह्मण कैसे बनाया, क्योंकि श्री वैष्णव सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मणवाद का एक बीच है, उसके अंदर उन्होंने कहा कि श्री वैष्णव आचार्य कौन है उनका व्याख्या करते हुए उसका उनका रूल बताते हुए कहा, श्री वैष्णव आचार्य वो है जो भी व्यक्ति आके प्रणाम करता है तुरंत उनको तिलक लगा देना चाहिए। हम लोग तिलक बोलते हैं उनको, उनके अनुसार संप्रदाय के अंदर तिरुवल्लुक बोला जाता है या संस्कृत में इसको उर्द पंड बोला जाता है। तो द्रौपदी ने क्या किया, जो आया ये और जो आया हम सबको बुलाए बैठो ये नहीं देखा कौन है क्या है रह पाएगा इतना दिन तक रहेगा कोई आया ना आया इतना अंतर के संन्यास दीक्षा दे दिया। भगवान ये नहीं सोचे कितना दिन तक संन्यास रह पाएगा, वो भी नहीं सोचे अभी है ना ले लो अभी दूसरी बात। वही श्री वैष्णव आचार्य का एक और एक रूल है, कोई व्यक्ति आप कोई आचार्य के पास आके शरण लेता है उन आचार्य को पूछना भी नहीं चाहिए आप कौन है आप कहाँ से आए हैं आपका जात कौन सा है और कौन से बैकग्राउंड से है बिल्कुल पूछना नहीं चाहिए। क्या पाप करके आए जिसे खून करके आया हो क्या वो भी नहीं पूछना चाहिए। और बहुत पहले तो वही कार्य किया उन्होंने, ये नहीं पूछा कौन सा ड्रग लेके आया कौन सा एलर्जी कल रात को कहाँ था क्या कर रहा था कुछ नहीं पूछा, अभी आया ना चलो रसगुल्ला खाओ चेक करो और जितना दिन करना है करो, मैं आशा करता हूँ पूरा जीवन में। तो ये आचार्य का डेफिनेशन शास्त्रों के अनुसार अगर परफेक्टली अगर फिट होता है तो रामानुजाचार्य को है, और हम देख सकते हैं कि वो जो डेफिनेशन है आचार्य का जो शास्त्र में श्री वैष्णव आचार्य के अनुसार है वो हम प्रभुपाद में देख सकते हैं। अगर रामानुजाचार्य को दर्शन करना है तब जाते हैं श्रीरंगम में, उनकी जो समाधि अभी जाते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, खाली अपना अभी चलिए मधुआचार्य, क्योंकि वैसे ही देखा जाए रामानुजाचार्य प्रभुपाद का जीवनी सिद्धांत में कंपैरिजन तो फिर उसके सेमिनार है वो आपको जैसे सेमिनार नहीं दे सकता, तो इसलिए थोड़ा सा जीवनी के कंपैरिजन था, वो भी दो तीन बातें ऐसे बहुत सारे बातें एवरीथिंग हैज गॉट अ पैरेलल लाइक ऑफ रामानुजा एंड प्रभुपाद दोनों का एक एक प्रसंग देखेंगे दोनों मिलता जुलता है, सिद्धांत की बात ही नहीं बल्कि जीवनी के साथ। दूसरा भी श्रीपाल रामानुजाचार्य श्रीपाल मध्वाचार्य श्रीपाल मध्वाचार्य खास करके वो जाने जाते हैं सिद्धांत के एकदम, जैसे अंग्रेजी का टू कॉल स्पेड स्पेड, यानी एक चीज को यथा रूप में और जो है उसी चीज को ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके थोड़ा सा उसको कवर करके बताना, जो है स्पष्ट रूप में बता देना, वो भी कैसे हथौड़ा जैसा मारा जाता है ऐसा। इसके बाद मध्वाचार्य जब मायावादियों के साथ खास करके तर्क करते थे तो श्रीपाद मध्वाचार्य ने एक शब्द इस्तेमाल किया, दूर था, हिंदी में दूर हम बोलते हैं। एक बार मैं जब दक्षिण भारत में गया था, एक व्यक्ति ने पूछा मैं आपके गुरु जी का किताब पढ़ा, वो कैसे पता नहीं आप इतना उसका पूजा करते हो, एक साधु है एक सन्यासी है वो ऐसा रैशनल कूल बार बार बोलना कितना उचित है, मेरे महान कार्य के लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये वो कोई और नहीं थे, मेरे बहुत दूर के रिश्तेदार थे, बहुत वृद्ध थे। मैंने कहा कि आप तो मध्व वैष्णव है, तो मध्वाचार्य ने क्या कहा आपको मालूम है? तो तुरंत हंस के चुप होके बैठ गए, क्योंकि भारत भर मध्वाचार्य वो दूत अरे राष्ट्र, अगर अंग्रेजी में तो कोई करीब शब्द है दूत शब्द का वो है राष्ट्र। तो गौपाल जी ने ऐसा कोई नया चीज नहीं बताया, अगर उनके कन्वर्जेशन सुनोगे आप, कन्वर्जेशन गौपाल जी का, वो सारा कन्वर्जेशन बिल्कुल जिस प्रकार मध्वाचार्य ने लोगों के साथ तर्क किया तो वही का वही है। एक बार मध्वाचार्य के पास एक बुद्धि साधना करके एक बड़ा बुद्धिस्ट आया, बहुत सारे चीजों ऐसे बैठे दोनों बैठे हैं, क्योंकि कोई वाद होता है सबसे पहले स्टेटमेंट देना होता है उसको, उसको विषय कहा जाता है। बुद्धि सागर ने कहा एवरीथिंग इज नथिंग, यानी सब कुछ कुछ नहीं। तो मध्वाचार्य ने कहा आप जो बोल रहे हैं वो भी सब कुछ में आता है। तो बुद्धि सागर ने कहा ऐसा लगता है कि आज का मूड बराबर नहीं, हम कल तरह करेंगे। तो ऐसे प्रभुपाल जी का जो आप करेंगे एक कन्वर्जेशन में एक रशिया में पटोस्की, उनके साथ चर्चा करते हैं, पटोस्की ने कहा प्रभुपाल जी से दी बिलीव एवरीथिंग इज नेचर। तो प्रभुपाल जी का हुज नेचर, अच्छा इन इंडिया यू हैव कास्ट सिस्टम यू नो व्हाट व्हाट अबाउट इट, अरे हो गया हार गए एक ही लाइन। तो खास करके तो श्रीपाद मध्वाचार्य उनकी जीवनी के साथ, तो श्रीपाद मध्वाचार्य का जीवनी इतना अद्भुत जीवनी है। अद्भुत जीवनी ऐसा है कि वो बचपन में संन्यास ले लिए, संन्यास लेने के बाद उन्होंने भगवान जो है उडुपी कृष्ण द्वारका से मध्वाचार्य को ढूंढ के आए, कहा है मैं उनका सेवा स्वीकार करता हूं। तो ये बड़ा गुरुत्व बात है, प्रभुपाद जी जहां जहां मंदिर को स्थापना किए, हम सोचते हैं कि प्रभुपाद जी ने स्थापना किया, असल में शास्त्रों में गुप्त रहस्य पंचरात्रि शास्त्र में कहा गया है, परशुराम जी जब पूरा विश्व में अलग अलग जगह जाके क्षत्रियों को संहार किए और जहां जहां संहार किए उस क्षेत्र को आक्रमण किए परशुराम जी, उधर उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया, और उन्हीं ग्रंथों में कहा गया है कि ये मंदिर जो परशुराम जी जो स्थापना किया है कलयुग में उन्हीं मंदिरों का पुनर्स्थापना होगा। अरे कौन किया? एक बार गोपाल से पूछे, गोपाल जी इंस्टॉल दिस डेडीज वर फ्रॉम देयर हमारे सामने दिखाई नहीं पड़ रहे थे लेकिन वो पता है। तो वैसे अनेक बोले कुछ जैसे जब दक्षिण की ओर गए मध्वाचार्य, तो उन्होंने अनेक बोले को मायावादियों से तर्क किया और भागवत का सिद्धांत को स्थापना किया, पंचवेद सिद्धांत को स्थापना की। वैसे श्री प्रभुपाद जी उनका जो खास करके भारत आने के बाद, यानी वापस जब विदेश से वापस भारत आए, तो उधर उनकी जो भागवतम की जो व्याख्या है खास करके भारत में वो देखेंगे, वो बहुत लंबा लंबा चर्चा है, और खास करके अपने भक्तों को भागवत क्या है प्रकाश करते हैं। तो शुरुआत में प्रभुपाद जी मैंने क्या कह दिया उधर भगवद गीता का बहुत प्रचार किया, लेकिन भागवत का प्रचार जो है वो तो दक्षिण में आके प्रभुपाद जी ने किया, दक्षिण को आगे तो वैसे बहुत सारे सिमिलैरिटी वैसी सी बात वाला बात चाहिए। विष्णु स्वामी सिद्धांत के दृष्टिकोण से बहुत बहुत एक 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 लाइन खास करके भागवत के परपोर्ट जो है आपको वल्लभाचार्य के परपोर्ट से बहुत सारा चीजें मंजूर करता है। और हम ये एक साथ ये सब चीजें बता नहीं जा सकता है, लेकिन बात ये है कि अगर आपको कोई आचार्य को देखना है या दर्शन करना है या उनकी ग्रंथ पढ़ना है तो आप प्रभुपाद जी को दर्शन कीजिए और प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़िए और आपको वो सब चीजें प्राप्त अपने आप हो जाएगा। इसलिए सार रूप में ही श्री प्रभुपाद जी इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल आचार्य टू अपियर बिफोर हिम लाइफ एट द टाइम ऑफ ब्रह्मा इज श्रीमद भक्ति सिद्धांत। अगर कोई आचार्य को भी देखना है, अगर नारद जी को भी देखना है श्री प्रभुपाद के द्वारा देखना है, अगर आपको श्री विश्वनाथ चंद्र ठाकुर को दर्शन करना है या शेख गोस्वामी को दर्शन करना है वी कैन ओनली सी थ्रू श्री प्रभुपाद। अगर अलग से देखने जाएंगे हमारे आंख उतने योग्यता नहीं है उनको दर्शन करने, प्रभुपाद जी को दर्शन करेंगे प्रभुपाद जी को दर्शन करने की योग्यता है हमारे पास, क्यों है जिनकी सेवा। तो हम जितना सेवा करते हैं प्रभुपाद जी के द्वारा हम सारे आचार्य को दर्शन करते हैं, दर्शन पाना आचार्य। तो ये मेरा निवेदन है कि आज मैं प्रभुपाद जी प्रार्थना करता हूँ कि एक ही प्रार्थना है, ज्यादा कुछ प्रार्थना नहीं है, जीवन भर जब तक शरीर रहेगा तब तक आपकी सेवा में लगा चले।
हम लोग आप शाम तक बोलेंगे नहीं करेंगे, लेकिन समय की पाबंदी के कारण उन्हें इंतजार देना पड़ा, चाहे थोड़े ज्यादा लोग सब थोड़े से आगे आ जाइए, थोड़ा सा मुझे नहीं दोनों व्यक्तियों के बीच जो स्पेस है उसको कम कर दीजिए, पूरे आगे सब लोग आगे। और इतनी जगह नहीं है आगे आगे थोड़ा जगह पीछे कर दीजिए ताकि लोग आ सकें, मधुरी साथियों थोड़ा इस तरह से जाइए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
आप लोगों को बाद में प्रश्न पूछ जाए पूछे जाएंगे कौन क्या बोल रहे बड़ा ध्यान से समझ। अभी मैं हर्ष गोविंद प्रभु से निवेदन करता हूँ कि जो ग्रंथ पूजा में जिन्होंने गोपाल कृष्ण महाराज इन्होंने जो ऑफरिंग दिया है सब गोपाल को उसको पढ़े और पूछता भी हूँ
जनार्दन से O my God, great philanthropic souls travel on the earth on behalf of the Supreme Personality of Godhead to show compassion to fallen souls who are averse to the sense of covering to the Lord. In the purpose you state, great unalloyed devotees of the Lord are compassionate towards their fallen and therefore they travel all over the world with the mission of bringing souls back to the Godhead, back to home. Such pure devotees of the Lord carry the message of Godhead in order to deliver the fallen souls. Srila Prabhupada, you are that merciful Vaishnava who left Vrindavan in old age to exhibit your spiritual master's order. You are the Vaishnava of the highest order. Your every action was based on the teachings of the Acharya and Sastra. In spite of having thousands of disciples, you were always humble servant of Lord Chaitanya. You fall mercy just like the rain clouds pour rain on the dry earth. You open spiritual hospitals like temples, spiritual hospitals temples, all over the world so that the conditioned souls could become enlightened about the importance of human life. In spite of many obstacles, you are determined to establish Krishna consciousness on this planet. You showed us how to push the Lord Chaitanya Sankirtan movement by your own personal example. You taught us the sublime process of chanting, dancing, worshipping the deities and taking prasadam in the association of the devotees. You established very beautiful temples all over the world. You emphasized the importance of visiting the Dhammas by establishing beautiful temples in Mayapur Vrindavan. You work hard to translate the Vedic texts for the benefit of the humanity. Your books are now available in over 70 languages of the world. You stated that these books will give guidance for the next 10,000 years. Every day we meet the people who lives change after reading your books. Your books are the dearest time bomb. They can explode at any time. You wanted us to study your books and also distribute them. You emphasized that the book distribution is the highest welfare activity one can engage in. You are continuing to preach through your books, videos, recorded lectures. You are our eternal Father, guide and well-wisher. Once again, I want to beg you to give me the strength and intelligence to remain engaged in the service in your glorious ISKCON movement. Your movement is the only hope for the suffering humanity. Due to your purity, your Krishna consciousness movement has continued to expand, and even after your physical departure, book distribution is increasing in many parts of the world and more spiritual hospitals are being built, especially in India. Due to your conscious mercy, we now have 5 temples in Bombay and in Delhi. This expansion of Krishna consciousness is happening only due to your dedication to fulfilling Lord Chaitanya's prediction that the holy name will be chanted in every town and village. Your significant servant, Gopal Krishna Swami. Jai Gopal Krishna Swami Maharaj Ki, Shri Prabhupada Ki. Abhi Kamal Chandra Prabhu अपना ऑफरिंग दे रहे थे, पैसा लगा है कि कमल सिंह प्रभु का पूरा एक दिन क्लास रखना पड़ेगा. प्रभुपाद ऑफरिंग कंपेयर टू आचार्य, कैसे उन्होंने कंपेरिजन किया. तो प्रभुपाद जी एक ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था, मैं शेयर करना चाहता हूँ आपको भी. प्रभुपाद जी के टाइम बहुत सारे जैसे कमल सिंह प्रभु ने जो आया उनको दीक्षा दे दिया और उनको सन्यासी भी बना देते थे. ऐसे एक बार प्रभुपाद जी ने वेस्टर्न कंट्री में यूरोप में किसी को दीक्षा दे दिया सन्यासी बनने को. सन्यासी बनने के बाद में उस समय के बाद में प्रभुपाद जी को बिना पूछे गृहस्थ बन गए। तो सारे डिसाइपल्स जो है प्रभुपाद जी के, वो सभी ऐसे चाहते थे कि प्रभुपाद जी अभी उसको मूवमेंट के बाहर फेंक देंगे और उसी समय उसके ऊपर एक्शन लेंगे। तो प्रभुपाद जी कुछ बोला नहीं, सभी चाहते थे कि प्रभुपाद जी कुछ करें। कुछ समय के बाद वो डिसाइपल्स भी बहुत घबराए हुए थे कि मैंने गुरु के आज्ञा के बिना ऐसा काम किया। तो आए और प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी को मिलने के लिए प्रभुपाद जी ने कुछ बोला, उनसे बोला थैंक यू वेरी मच, देव टेकन गुरु। अभी डिसाइपल सब पढ़ते थे चैतन्य चरितामृत भागवतम। तो प्रभुपाद जी बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने गृहस्थ का स्वीकार नहीं किया था, ऐसे एग्जाम्पल भी। तो प्रभुपाद जी बोले चैतन्य महाप्रभु सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है, मैं उनका दासानुदास हूं, मुझे सबका जरूरत है। तो उसके बाद में जैसे उनकी पत्नी के साथ में आए, तो प्रभुपाद जी ने उसी समय उनको दीक्षा का नाम देकर उनको भी दीक्षा उसी समय में दे दी। तो यह है प्रभुपाद जी की कृपा कि कैसे प्रभुपाद जी कैसे भी हो इसको कैसे एक्सेप्ट कर देते थे। ऐसे एक बार जीबीसी मीटिंग चल रहा था, तो जीबीसी मीटिंग में प्रभुपाद जी ने बॉडी बना दिया था और बॉडी बनाने के बाद में प्रभुपाद जी मीटिंग में बैठते थे। तो प्रभुपाद जी सबके गुरु थे और गुरु के सामने क्या डिस्कस करना। तो एक रेजोल्यूशन आया, गृहस्थ का मेंटेनेंस, गृहस्थ का मेंटेनेंस नहीं मिले, गृहस्थ का मेंटेनेंस आपको सब मालूम है, मेंटेनेंस वेतन। तो उसके बारे में डिस्कशन हुआ, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए, प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोले। मीटिंग चल रहा था, उन्होंने रेजोल्यूशन बना दिया कि गृहस्थ के लिए ये चीज पास कर दिया और सभी ने पास करने के बाद में वोटिंग के लिए प्रपोजल डाल दिया कि इस रेजोल्यूशन के ऊपर वोटिंग होगा। तो जैसे वोटिंग शुरू किया, प्रभुपाद जी ने पहला हाथ ऊपर कर दिया। तो सभी सन्यासी एकदम ये हो गए, जीबीसी जो थे कि प्रभुपाद जी सन्यासी है और गृहस्थ के बारे में कैसे पहले हाथ ऊपर कर। तो जब भी प्रभुपाद जी को ऐसा पूछा गया तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं प्रभुपाद जी की नम्रता के बारे में बता रहा हूं। कि प्रभुपाद जी ने बोला कि मैंने ये बॉडी बनाया है जीबीसी और सभी को उसको फॉलो करना है, इसकॉन मैनेजमेंट जो है वो जीबीसी को पूरा फॉलो करना है और मुझे भी वो जीबीसी को फॉलो करना है। खुद स्वयं ने बॉडी बनाया और खुद बोलते हैं मुझे भी उसको फॉलो करना है। तो ऐसे प्रभुपाद जी हमें सिखाते हैं कि कैसे नम्र बन के हमें शरणागत होना चाहिए। और हमारे मंदिर में और एक इंसिडेंट हुआ है ऐसा कि प्रभुपाद जी की वजह से, मैंने पहले भी एक बार ऑफरिंग में बताया, मुझे याद नहीं, हमारे मंदिर में एक इंजीनियर है जो हमारे डिजाइन किए हैं कंस्ट्रक्शन का, आरसीसी का डिजाइन बनाया है। तो उनके ससुर फादर इन लॉ प्रभुपाद जी के समय में जुहू टेम्पल में वो इंजीनियर थे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इंजीनियर थे। वो आए और उस टेम्पल स्ट्रक्चर ऐसा जो बना था उसको तोड़ने के लिए आए और उसके पास ऑर्डर था, बोले ऑर्डर है मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी के पास हो गए, पांच मिनट प्रभुपाद जी ने उनका हाथ पकड़ा और रिक्वेस्ट किया कि ये न टूटे, उसका प्रयास करना है और उसका हमें रास्ता बताइए। तो उन्होंने बोला एक रास्ता है, आप अभी का अभी जाके अंधेरी कोर्ट में जाके इसके ऊपर स्टे ले लीजिए, आपको स्टे मिल जाएगा, लेकिन मेरे को ड्यूटी है, मेरे को तो तोड़ना पड़ेगा, अगर आपका स्टे नहीं आया तो मैं आपको दो बजे तक का टाइम देता हूँ। और उसी समय में प्रभुपाद जी के दिशा पर कोर्ट में जाके तुरंत इसके ऊपर स्टे लेके आए। प्रभुपाद जी ने उसको बहुत बहुत थैंक यू किया और वो इंजीनियर उस समय में 30 ईयर्स के थे, चलिए उसके बाद में उन्होंने ये किया अपना बॉम्बे में बहुत सारे अपने जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बॉर्ड थे उसमें उनका सेवा था। उसके बाद रिटायर हो गए, रिटायर होकर बैंगलोर में सेटल हो गए। उनके बेटे, उनकी दो बेटियां थी, उनका शादी ब्याह किया और वो जिनसे शादी की थी वो हमारे इस्कॉन के डिवोटी थे। अच्छा, इनको ये नहीं मालूम है ये किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि मैं प्रभुपाद जी को ऐसा ये मूवमेंट चल रहा है, इस्कॉन मूवमेंट है वो प्रभुपाद जी का है कुछ। उन्होंने इतना ये नहीं किया कि हमारे बेटी है वो सब कृष्ण कॉन्शियस भगवान के भक्त है, उतना तक उनका सीमित था। अभी तीन साल, ढाई तीन साल पहले वो जू मंदिर में आए। जैसे मंदिर में आने के बाद में मंदिर बन गया, उनको पता नहीं वो एरिया कैसा था उस समय का एरिया, 40-45 साल के बाद में जैसे प्रभुपाद जी को देखा और उसी समय में उनको पता चला कि उनके बेटे, उनकी बहू, ये सारे ये प्रभुपाद जी के मिशन में है और ये इनके डिवोटी है, उसी समय प्रभुपाद जी के सामने जू में उनके आंख में आंसू आ गए, जबकि कभी उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र नहीं छोड़ा था, कभी मंदिर में नहीं गए थे। लेकिन देखिए प्रभुपाद जी की कृपा कैसे है, वो भक्त नहीं बने, वो भक्त नहीं बने इस्कॉन के, लेकिन उनका सारा फैमिली आज सभी भक्त है और फुल टाइम डिवोटी है, गृहस्थ फुल टाइम डिवोटी है। तो उनके दामाद जो हमारे यहाँ मंदिर में इंजीनियर है वो उनको इधर हमें मिलाने के लिए आए और पर्सनली देखने के लिए आए, प्रॉपर जी का सैंपल देखने करीबन 6-8 महीने पहले की बात। जब उन्होंने मंदिर देखा और सब उन्होंने पर्सनली ये सब बात की और मुझे अभी भी उन्होंने यही बोला कि आज तक भी मैं भगवान, अभी मैं सभी स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ लेकिन अभी मैं प्रभुपाद जी से ये कृपा चाहता हूँ कि कब मैं भी भक्त बन जाऊँ। इतना बोलने के लिए वो आए थे, इतना बोलने के लिए आए। तो ये है सब प्रभुपाद जी की कृपा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो मैं आज के दिन प्रभुपाद जी के ये चाहते हैं कि अभी कमलेश प्रभु के ऑफरिंग में हमने सुना कि कार्तिक में ओपनिंग करेंगे, तभी मुझे भी पूछते हैं, मैं भी बोलता हूँ बस अभी 4 महीना 6 महीना ऐसे हम प्रॉमिसेस करते हैं। लेकिन आज मैं प्रभुपाद जी से ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी भक्तों का प्रयास चालू है लेकिन मंदिर ओपनिंग जैसे डेजर्ट में पानी दिखता है लेकिन जाते हैं ना वहां पहुंचते तो क्या दिखता है, रेत है। ऐसे हमारे जो ओपनिंग डेट्स है, हमारा जो हम लोग जो चाहते हैं कि हम अभी उद्घाटन करेंगे, उद्घाटन के डेट तक पहुंचते पहुंचते ड्राई हो जाते हैं। तो ये जो है प्रभुपाद जी आज डिसाइड करे कि इस ईयर अगले प्रभुपाद जी का व्यास पूजा तक प्रभुपाद जी डिसाइड करेंगे कि हम कब ये मंदिर का उद्घाटन करेंगे। हम भक्तों का प्रयास रहेगा, आप सभी यही प्रार्थना करिए कि प्रभुपाद जी डिसाइड करेंगे, क्योंकि अगर हम भी डिसाइड करते हैं तो वो क्रेडिट प्रभुपाद जी हमें देते हैं कि हमने डिसाइड किया कि ये मंदिर का उद्घाटन करना हमने कर दिया, लेकिन वो हमारा क्रेडिट जो है वो प्रभुपाद जी का क्रेडिट। प्रभुपाद जी हमेशा भक्तों को क्रेडिट देना चाहते हैं, कोई भी कार्य का क्रेडिट प्रभुपाद जी अपने भक्तों को देना चाहते हैं। तो आज हम प्रभुपाद जी से यही प्रार्थना करते हैं आज के दिन, क्योंकि आप डिसाइड करिए कि इस मंदिर का उद्घाटन इस साल के अंदर कब होगा। हरे कृष्ण।
प्रभुपाद जी हमारे मंदिर में सर्व सबसे वरिष्ठ भक्त हैं, उनके हरिदास प्रभु, उनको मैं विनती करता हूँ करना मेरा
बोलिए हरे कृष्ण महामंत्र।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare
Hare. हम कहाँ से चालू करें? कंफ्यूजन उसका बोल देता हूँ. तो अभी कमलोचन प्रभु कुछ आचार्य के विषय में बता रहे थे. तो हम यहां चालू करें प्रभुपाद जी का चलना, प्रभुपाद जी का हंसना. ये अपने आप में पूर्ण है कि पूर्ण से ही पूर्ण निकलता है, अपूर्ण से पूर्ण कभी निकलता नहीं है. ये सबको ज्ञात होना चाहिए. कृष्ण पूर्ण है और कृष्ण के द्वारा ही प्रभुपाद जी को यहां पर भेजा गया था चैतन्य महाप्रभु के बाली को स्पष्ट करने के लिए. कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है. पृथ्वी याचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मर होइबे. जो होइबे का मतलब होता होगा, होने या होगा. तो कौन किया? प्रभुपाद जी ने किया. इसके पहले बहुत से आचार्य आए थे और आगे क्या होगा हम उसको नहीं समझ सकते हैं. आगे हम कब जन्म लेंगे, कहां जन्म लेंगे, वो अभी मालूम नहीं है. लेकिन प्रभुपाद जी की शक्ति से हम लोग यहां पे हैं. हम लोग कृष्ण को नहीं जानते थे, हम लोग प्रभुपाद जी के द्वारा ही कृष्ण को जानते हैं. हे प्रभुपाद जी, आप असीम कृपा किए हैं ताकि हम बच जीव को आप कृष्ण के चरण में लगा रखे हैं. अगर हम कृष्ण कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण हमको देखने नहीं आएंगे. कृष्ण को देखने वाले बहुत हैं. लेकिन अगर हम प्रभुपाद जी को देखते हैं, प्रभुपाद जी के सामने प्रणाम करते हैं, प्रभु जी प्रभुपाद जी के सामने रोते हैं गाते हैं, तो कृष्ण जरूर देखेंगे कि हमारा भक्त के पास कोई बैठा हुआ है. और एक बात है, कमलोचन प्रभु जी क्लास दे रहे थे तो बात मुझे बहुत घूम रहा है, तो मैं चाहता था क्या शेयर करो. हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में होते हुए भी हम कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है. हम क्यों कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है? क्योंकि प्रभुपाद जी के वाणी को जो हम सुनते हैं, प्रभुपाद जी जो बोले हुए हैं, हम बहुत से चीजें नहीं कर रहे हैं. वो क्या नहीं कर रहे हैं अब मैं बता रहा हूं. गाय क्या, जो गाय हमारी माँ है, हम तो बोलते हैं हम डिवोटी हैं, लेकिन हम वही यूज कर रहे हैं जो हमें यूज नहीं करना है और हम उसे सहयोगी बन रहे हैं. प्रभुपाद जी के बारे में हम सच नहीं कर रहे हैं. इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है सब लोगों से, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करता हूं कि प्रभुपाद जी सुबुद्धि दे हम लोगों को जितना हो सके गाय का प्रोडक्ट यूज करें. जो आरती किया जाता है, आरती दिया जाता है तो अगरबत्ती नहीं दिया जाता है, धूप दिया जाता है भगवान को. तो हम अगरबत्ती का आरती करते नहीं, धूप से करना चाहिए. प्रभुपाद जी की और भी इच्छा थी, बहुत कुछ इच्छाएं हैं जो प्रभुपाद जी बोल गए हैं. इच्छा को पूरा कौन करेगा? प्रभुपाद जी हम लोगों को दिए हैं कि आगे बढ़िए, हमारे मूवमेंट को आगे बढ़ाइए. प्रभुपाद जी चाहते थे 1968 में अच्युतानंद महाराज को लेटर लिखे हैं कि वी वांट एवरी हाउस टेम्पल, ईच एंड एवरी हाउस टेम्पल. ये मंदिर प्रभुपाद जी इसलिए बनाया कि हम यहां से ट्रेनिंग लें. जैसे महात्मा प्रभु बैठे हैं, हॉस्पिटल में देखभाल करते हैं, डायरेक्टर हैं, उसी प्रकार से यहां पर प्रभुपाद जी ने मंदिर इसलिए बनाए हैं, यहां पर लोग आकर के दर्शन करें और अपने घरों में प्रैक्टिस करें, वहां से आगे आगे सभी को भक्त बनाएं. एक सीमित जगह हम न करें इसको. ये प्रभुपाद जी की इच्छा थी जो अच्युतानंद महाराज को 13 अक्टूबर 1968 को प्रभुपाद जी ने लेटर लिखा. तो कृपया करके आप लोगों का अनुरोध है कि प्रभुपाद जी का बर्थडे, बर्थडे में कुछ न कुछ हम देते हैं किसी को. तब कृष्ण का बर्थडे था, आज प्रभुपाद जी का है. तो प्रभुपाद जी का आपके बोल लीजिए
कि प्रभुपाद जी को खुश करने के लिए हम सिर्फ गाय का ही जितना पदार्थ है वही यूज करेंगे, अगर वो यूज नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप काउ किलिंग में सहभागी है, इस नाम कृष्ण का नाम लेंगे इस तक नहीं पहुंचेंगे। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 राम। ये थे हमारे सीनियर वैष्णव जिनसे हम सुनना चाहते थे और इनको मैंने कोई समय की पाबंदी नहीं लगाई थी। अभी हम चाहते हैं कि एक ही घंटा है, काफी लोगों को बहुत बात करनी है, भगवान के बारे में अपने विचार को प्रकट करना है, तो सब लोग कृपया 3 मिनट का समय रखें और आकर बोलकर जैसे आपको अगर ज्यादा बोलना है तो पहले भी मन पर पहले मन में ही बोल के दीजिए, उसके बाद शुरू करो। तो अभी मैं चांद को भी प्रभु को बुलाता हूँ, चांद को भी प्रभु मिलता हूँ। अतुल कृष्ण प्रभु आपको है आप ठीक है, अतुल कृष्ण प्रभु नहीं है तो फिर कृष्ण के प्रभु आप तैयार होंगे।
हरे कृष्ण रूपा जी का एक सौ पत्र अभिभाषी थी 117 साल में अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ा सफलता जो है क्योंकि भूमि ने बताया कि 3 मिनट बताने का, इसके लिए मैं संक्षिप्त रूप से बताना चाहता हूँ क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय का सबसे बड़ा सफलता जो है ये साल मिली, जो कि इतना साल तक इसको हमने प्रयास की थी गोपाल जी का जन्म स्थान इसको हमारे नाम में आ जाए, लेकिन इतने साल तक इतना संघर्ष करने के बाद भी मिला नहीं था, जो कि 6 महीना पहले वो मिला इसको वो कब्जा कर लिए गोपाल जी का जन्म स्थान। जितने साल तक हम लोग सुने हुए थे हरिचंद और चंगड़ा में गोपाल जी का जन्म स्थान था, लेकिन गोपाल जी का जन्म हुआ थे कलकत्ता का टालीगंज बोल की एक जगह है जहाँ पे गोपाल जी का माता का घर था। बचपन में ऐसा आदत थी कि किसी का भी जब बच्चे जब पैदा होते हैं तो माता अपने घर में पहुंच जाते हैं, तो गोपाल जी का माता का घर में जाकर गोपाल जी की छोटी कुटिया, जिस कुटिया में आज सामने भी एक फनक का बहुत बड़ा पेड़ है, राधा जी मन प्रभु बता रहे थे कि ये जो फनक का पेड़ है वो 140 साल का पुराना है, जिसमें आज भी फानस भरी हुए रहते हैं, इस पर भी बहुत सारे संघर्ष की थी इस जमीन को अपने नाम से लिखाने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवशत इतने साल तक संघर्ष करने के बाद वो प्रयास को सफल नहीं कर पाए, लेकिन इस साल 6 महीना पहले परम पूज्य राधा स्वामी महाराज और राधा जीवन प्रभु ये दोनों ने क्लांत परिश्रम करके ये जमीन को मतलब प्रभुपाद जी का जन्म स्थान जो असली जन्म स्थान कालीगंज में और जमीन को इस्तान का नाम दिया है। तो रघुनाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कि इस जमीन का ऊपर आदिवासी में और सारे बहुत सारे जमीन पड़े हुए हैं, कम से कम 2 एकड़ जमीन मुझे पड़े हैं, महाराज बता रहे थे कि यार ग्रैंड टू पार्टी जिसके ऊपर ग्रैंड पर, तो उसी जगह में अभी बहुत सारे कम से कम लगभग 10-12 ब्रह्मचारी रहते हैं, गोपाल जी जिस कुटिया में गोपाल जी को जन्म हुए थे उसमें गोपाल जी का बहुत ही सुंदर विग्रह रखे और सुबह शाम गोपाल जी का पूजा वगैरह होते रहते उसी जगह में, हमारे पता रहते कि ऐसा प्लानिंग चल रहा है कि उसी जगह में गोपाल जी का नाम से मतलब प्रभुपाद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट एक स्कूल बनाना चाहते हैं, जिस स्कूल में इंस्टीट्यूट में कोई जाते हैं तो पढ़ाई करने के लिए उसमें मेटेरियल एंड इंसिडेंट दोनों तरीके का ज्ञान प्राप्त करें, यही प्रयास है सबको, सब भक्त लोग ने बहुत प्रयास करे उसी जगह पे, ये 170 साल का वेस्ट किया सबसे बड़ा सफलता इस अंदर जो है जो गोपाल जी का जन्म स्थान आज इस कौन का नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। वास्तव में वो मुझे जो नियम बता के तीन मिनट मेरे साथ मैंने तीन मिनट में नहीं बोला हूँ दो मिनट में अभ्यास
बहुत अच्छा मिल गया दो मिनट
में जन्मदिन के
ऊपर हमें जन्मस्थान हिंदुस्तान में श्री प्रभुपाद का जन्म स्थान है कलकत्ता में उसकी बहुत अच्छी निर्वाह है वेरी गुड। हाँ तो हम लोग जब यह कह रहे हैं कि बहुत लोगों को बोलना होगा लेकिन शाम को भी कार्यक्रम है यहाँ पर जिनका आज हो नहीं सकता है 6 बजे फिर से प्रभुपाद के लिए रात पूजा ऑफिस होंगे तो हम लोग 6 बजे भी आइए। अभी मैं भगवती माता जी उनको निवेदन करता हूँ प्रभुपाद के बारे में पूछते हैं
करते थे कि अगर प्रभुपाद जी के पास पूरी लेके जाए
So there should be quality. Jab hame, we know the importance of the Supreme Personality of Godhead, then automatically quality comes. So I only pray to Srila Prabhupada, by the mercy of Srila Prabhupada and all the Vaishnavas, we are having business losses. So I only pray to Srila Prabhupada that he gets all of us with these three qualities so that we can grow a better quality.
जरूरत
क्या किया है? सब लोग भक्त बोले कि प्रभुपाद जी आपका फैमिली के लिए कुछ भेजना है, आप बोलते हो सर मेरे एक लड़का था एक लड़की थी उसके लिए कुछ देना है, यहाँ से हमारे पास तो बहुत धोना है, उसको दे दिया, उसका वितरण में कर दिया बस, आपके लिए मैंने एक लड़का छोड़ा, मुझे इतना लड़का मिल गया उसका सलाह गोपर का त्याग और गोपर का वैराग, वैराग और गोपर की विरक्ति, रामानंद राय की विरक्ति और गोपर की विरक्ति क्या थी? एक दिन प्रभुपाद जी अपना कमरे में बैठे थे, हरीशूरी मालिश कर रहे थे, उसी समय गोविंदा देवीदास के दूध का उकाला कटोरा लेके आई और प्रभुपाद के सामने रखा, तो प्रभुपाद जी लेने के लिए तो हाथ कांपता था कटोरी में ठंडा करने के लिए, तो हरीशूरी ने कटोरी में दूध डाला, तब दोनों पांव खा लिए, हरीशूरी वापस एक पांव का चरण कंप्लीट करने लगे मालिश करे, तो गोविंदा बोले गोविंदा माता के प्रभुपाद आप बोलते हो कि मेरे लड़के या मेरे लड़के मेरा शिष्य और मेरी वैष्णवी शिष्या मेरे दोनों आंख है, दोनों समकक्ष है, तो क्या मैं आपका एक चरण पाव की चंपी कर सकती हूँ? प्रभुपाद बोले मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, जानती है बेटा मेरा ये शरीर है ना ये सन्यासी का है, तो सन्यासी का शरीर को माताओं को सुना मेरे लिए अपराध है और मेरे लिए कलंक, और ये तेरी सेवा और हरीश्वरी की सेवा दोनों में कोई अंतर नहीं। और प्रभुपाद जी प्रसाद बांट रहे थे कैंपस गार्डन में, तो एक माता सामने खड़ी थी, उसका कपड़ा का भी बस व्यवस्था अच्छा तरह से ढंग से पहना नहीं था, प्रभुपाद जी प्रसाद माता जी दूर खड़ी थी, आपने तो आइए आइए माइक्रोवेव प्रसाद और भी एक हाथ से प्रसाद लेते, तो बोली ऐसा वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, पूरा शरीर ढंग के अंतर हमारे इंडिया में लड़कियां ऐसा वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। वो दूसरे दिन साड़ी लेके आई कहां से, और प्रभुपाद जी को बोले कि मुझे ये पहनना नहीं आता है, खुद प्रभुपाद ने अपना शरीर पर बांध के दिखाई, इतनी महानता प्रभुपाद की हम लोग नहीं चुका सकते। प्रभुपाद जी ना क्रोध, हाँ ये साधु क्रोध करते हैं, जब कोई सामने बैन करता है प्रभुपाद जी समझाने का पूरा प्रयास करते, नहीं समझे तो क्या करे, विज्ञानी को बैन कर रहे थे, हम चंद्र पर गए हैं, हमें नासा में विज्ञान कर प्रभुपाद के चंद्र पर 40,000 साल का आयुष होना चाहिए तब वहां पहुंच सकते हो रोम रखने के, तो भी हम बैठ कर हमने वहां रुकने के लिए टिकट बुक कर प्रभुपाद के आप लास्ट करो पाकर, जो इतना एक मरते बाद में पाकर करते बाद में जो जिसने ये तैयार किया था वही व्यक्ति एक समय पायलट मार गया और चेयर में बैठा के जो मंदिर में लाए और जो मंदिर में वो सब यहाँ इंडिया का वैज्ञानिकों से सम्मान करने के लिए यहाँ बुलाया, तो बोले कि यहाँ एक जो मंदिर है सब वहां लेके लेके गए, और वो बात देखा तो देख के और ऐसा भाषा बोल रहा था, बोलने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उसका जो सेक्रेटरी था ना वही सुनता यंत्र के द्वारा तकनीकी प्रश्न के द्वारा उसको बोलता था, वो प्रति से वो समझाती थे बोल रही, वो बोल रहे कि मैं और सारी दुनिया को मूर्ख बनाया जमचंद्र पर गए हैं, तो एक व्यक्ति ये भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ना बोल रहे थे कि नहीं जा सकते, और लोगों को ये मूर्ख क्या, लोगों को मालूम नहीं था हमारा ज्ञान चंद्र पर चल रहा था, वहां ही वो ज्ञान चलता उसका परछाई पड़ रहा था, वो तो हमने नासा में तैयार किया था। ये प्रभुपाद जी का क्रोध, प्रभुपाद जी का क्रोध क्या है, डॉक्टर बोलने लगे प्रभुपाद हमने ये हड्डी बनाया, हमने ये चमड़ी बनाया, हम ये बना सकते हैं, हम बाद में हृदय बनाएंगे, हम दूसरी आंख बिठाएंगे, आप हे चमार, आप हे चमार, और बोल रहे हो काले मोती जूता सिलने वाले क्यों, डॉक्टर चमड़ी काट के यहाँ काटते इसलिए प्रभुपाद ने बोला, और प्रभुपाद की महानता हम क्या समझ सकते हैं, प्रभुपाद की गुणावली हम समय दबाव में रुकना चाहते हैं, बोलते रहे कि प्रभुपाद ने हमारे ऊपर इतना भारी उपकार किया है कि हम जन्म जन्म से नहीं छिपा सकते। मेरा 3 मिनट तो निकल दो।
आपका
भी
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
कृष्ण के प्रभु कृष्ण राम हरे तो महाराज कृष्ण को बोलने को समय नहीं दिया बहुत बोलने की दो बात के बारे में उनको बोलने की बहुत इच्छा रहती है देखेंगे आप किस प्रकार से उनमें बहुत दास आज फिर घूम के लेके आते हैं बहुत बहुत धन्यवाद और इतने अच्छी तरह से बताते हैं कि आप और हमारे भक्त बोल रहे हैं तो ऐसे पैसे के बारे में मान के तो उन्होंने 10 रुपए निकाला सुनने के बारे में पिछली बार परसों गौरव लोगों ने बहुत सुंदर बात कही थी प्रभुपाद के शिष्यों के बारे में प्रभुपाद के शिष्य ज्यादा करके व्हाइट स्किन वाले गोरे लोग थे भारत में कोई शिष्य ज्यादा नहीं थे तो भारतीय लोगों का एक स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार वो सीधे उनको उनकी निंदा करने लगे तो गोरे लोग ये क्या जानते हैं ये कृष्ण को क्या जानते हैं और उसमें से एक पंडित ने आकर बताया कि प्रभुपाद आपके सारे शिष्य आपके क्लास में छोटे हैं 100% लोग छोटे रहते थे मैंने देखा तो प्रभुपाद ने कहा 100% पक्का और नहीं 95% छोटे तो प्रभुपाद ने कहा देखो अभी 5% सुनने से ही बना होगा अभी 5% लोगों ने सुना तो क्या हो गया तो आप लोग सब लोग साधना जी 100% सुनेंगे तो क्या हो सकता आप भी जरा ध्यान से सुना करिए अभी मैं श्रीमती नारायण माता जी को बुलाता हूँ जो कि एक विशेष उदाहरण है प्रभुपाद की सेवा में ये माता जी ऐसे हैं इनके पति और उनके पुत्र के सहयोग के कारण ये डेली 100 से 150 किलोमीटर प्रवास करती है प्रचार के अमेजिंग प्रीचर तो नारायणी माता जी सिविल सर्विस समथिंग ऑफ लॉज पर 3 मिनट ऑफ डिसीज तब तक नागुन जो आप पहन
वाहन विपिन समचिरेण विलज्जयन्ति
వాత్సల్యవృందవసతిం పశుపాలనాద్యా సంఖ్యానుశిక్షణకళాసు గురుం సఖీనాం రాఘవలావరగజీవితనిర్విశేషాం దేవీం గుణైః లలితాం లలితాం నమామి. యాం కామభీవజ పునేవృషభానుజాయా ప్రేక్షస్వపక్షవదవిం అనురుధ్యమానం సత్యస్తతిష్టనకలేన కృతార్థయంతిం దేవీం గుణైః లలితాం లలితాం నమామి. రాఘవేంద్రసుత సంగమరంగచర్యాం నందమూలితాగుణలాలితాకడీర్మలదృష్టిదృష్టౌ ప్రీత్యావకర్షితజనం నిజవృందమధ్యే
praying to you, please help me to bring all the treasures of the Gaudiya Acharyas, Gaudiya Vaishnava Acharyas. They have written so many stavas, and bring all of you, all the devotees, please bless me that I can sing all the stavas, I can bring out all these treasures. There is Stavavalli by Gurusvami, Raghunatha Gurusvami. There is Tava Amrita Lahari by Vishnath Chakravarti Thakur. Just bring all of you so that I can sing for the pleasure of Srila Prabhupada and for Lord Krishna. And all the treasures of our Gaudiya Vaishnava Acharyas can be brought up to all the devotees. And by Krishna's mercy, very nice preaching is going on in Kalyan, Thana, Kedar Center, Chembur, for Bali Bodhi. So I
మహారీ గౌరవం
విష్ణుపాదాయ కృష్ణకృష్ణాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి నామినే నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశకారిణ. ఆజ్ పరమ పవిత్ర దిన్ హై. ఆజ్ కే దిన్ బ్రజ వృందావన్ మే గోకుల్ మే బహుత్ సుందర ఉత్సవ హువా, जिसे नल उत्सव के नाम से जाना जाता है. आज नंद के घर पर आनंद का जन्म हुआ. नंद घर और इस्कॉन के घर पर श्री प्रभुपाद जी का प्रकटी हुआ है. श्री प्रभुपाद जी की कहने को गुण है, उनके गुणों को शेष नहीं किया जा सकता है. कल जन्माष्टमी थी. जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आप सब कथा जानते हैं. जब कंस ने देवकी और वसुदेव का रथ चलाने का प्रयास किया, और जैसे कंस उस विवाह के उत्सव में देवकी वसुदेव का रथ चलाने का प्रयास किया, उसी समय देवताओं की आकाशवाणी हुई और देवताओं ने कह दिया, मूर्ख कंस, तू जिस देवकी का रथ चलाने जा रहा है उनकी आठवीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी. और तुरंत कंस का मन बदल गया. देवकी के बाल को पकड़कर उनके गले को काटने का प्रयास किया. मन में एक प्रश्न हो सकता है कि देवता जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने ऐसी आकाशवाणी क्यों की जिसे कंस देवकी को मारने तक तैयार हो गया. उस समय आचार्य जी कहते हैं कि जब कंस देवकी और वसुदेव का रथ चलाने का प्रयास कर रहा था, तब देवलोक में खलबली मच गई और सारे देवता मीटिंग करने लगे. इस संसार में यदि कोई भगवान की सेवा करता है तो हो सकता है भगवान उसको दंड दे दे, परंतु यदि कोई भगवान के भक्त की सेवा करता है तो भगवान कभी भी उसे नहीं मार सकते हैं. ये कर्ण जो है, देवकी और वसुदेव जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उनकी सेवा करने जा रहा है. और कंस ने यदि देव के वसुदेव की सेवा कर दी तो फिर भगवान कभी भी कंस को नहीं मान सकते हैं। इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी की। कहने का तात्पर्य यह है, इस संसार में भगवान के जो भक्त हैं, हो सकता है उनको भगवान मिले या न मिले, परंतु भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, उनकी शरण ग्रहण करके रखते हैं तो भगवान तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। हम सबका परम सौभाग्य है, हम कृष्ण के भक्त तो है ही, परंतु कृष्ण से भी ज्यादा हम श्री प्रभुपाद जी के भक्त हैं। और श्री प्रभुपाद जी की शरणों में रहने से निश्चित रूप से हमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। आज इस व्यास पूजा के दिव्य महोत्सव में प्रभुपाद जी के गुणानुवाद करने का मौका मिला है। श्री प्रभुपाद जी में अनेकों गुण थे, उनमें से एक गुण, वे सर्व गुण संपन्न थे। ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो श्री प्रभुपाद जी नहीं जानते थे। सारी बातें प्रचार में भी देखा जाए तो सभी प्रकार का प्रचार, भोजन पकाना, आरती करना, पूजा करना, ग्रंथ लिखना, प्रीचिंग करना, श्री प्रभुपाद जी सारी कला, सर्व कला विशारद थे। यहाँ तक कोई भजन लिखना हो तो इंस्टेंट भजन की तैयारी कर देते थे। तो श्री प्रभुपाद जी सर्व गुण संपन्न है और थे, परंतु कभी कभी इस माया जनित जीव में सारे गुण नहीं होते हैं, उन सभी गुण में से एक दो गुण वो भी परिपूर्ण मात्रा में नहीं होता है। तो आज के इस प्रभुपाद जी के व्यास पूजा के उपलक्ष्य में श्री प्रभुपाद जी से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभुपाद जी हम आपकी तरह सर्वगुण संपन्न नहीं है और नहीं बन भी सकते हैं, परंतु आप आशीर्वाद दीजिए, आप हम पर कृपा कीजिए कि हम, आपने जो ये मार्ग बनाया है, इस मार्ग पर हम दृढ़ता से चल सके और इस मार्ग पर रहते हुए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और साधना करते हुए इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महानंद का प्रचार कर सके। और साथ ही साथ इस पिछले वर्ष में श्री प्रभुपाद जी की कृपा से, श्री राधा गिरधारी मंदिर मैनेजमेंट की कृपा से हम मुंबई में अनेक क्षेत्र में प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे चंडी रोड में प्रोग्राम चल रहा है, मलाड में चल रहा है, बोरीवली में चल रहा है, नेचर में चल रहा है, और विरार में अनेकों भक्त राधा गिरधारी मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं। और इस साल का अवसर हमारा इतना ही है, प्रभुपाद जी हम आपकी तरह सर्वगुण संपन्न नहीं है, परंतु पिछले साल हम जो प्रचार किए हैं उस प्रचार के माध्यम से हमारे पास 12 काउंसलर तैयार हुए हैं। ये 12 काउंसलर हम श्री राधा के हरि मंदिर को सौंप रहे हैं और आशीर्वाद दीजिए कि आने वाले दिनों में हम ज्यादा से ज्यादा प्रचार कर सके और आपके इस श्री राधा के हरि मंदिर जो इसको उनका एक हिस्सा है, इनको हम आगे बढ़ा सके। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे
हरे। प्रभु भी इस मंदिर के सीनियर मोस्ट पुजारी है, काफी साल तक ये पूरा पुजारी डिपार्टमेंट अकेले ही चलाते रहे, अभी उनको पुलिस की मदद मिल गया उससे।
मिलने का तारीखा क्या है? उनसे कोई भी अखबार बोर हो ही बोलता है तो मैं रूपा हो जाता हूँ, दयाल है। लेकिन वही गुरु तो जब बड़े तत्व में प्रकाशित होता है तो पर बोलते हैं। बलराम जी के हाथ में दो वस्तु है, लांगल जिसका कहते हैं हलधर और एक है गदाभू स्वर्ग। लांगल का काम क्या है, जो खेती करते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं उनको मालूम है। लांगल क्या करता है, आगाछा को निकालता है, आगाछा निकाल करके उनको मिट्टी को तैयार करके जो शिष्य है उनको उत्पादन में संयोजन करता है। अगर लांगल ना हो तो खेती नहीं होगा। जो चीज लांगल के द्वारा नहीं होता है उसमें मुसल लगाना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोदाल। इसी प्रकार भगवान जी पूरा विश्व में लांगल चलाया, बड़ोदेव तत्व हो और पूरा विश्व को उपजाऊ बनाया। जो मरुभूमि था उनको उर्वर किया। अगर उन्होंने इस प्रकार नहीं करते थे तो आज इतना सारी फसल हमारे दृष्टि में नहीं आती। विश्व ब्रह्मांड में हरा भरा फसल हम देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और दर्शन का श्रेय बड़ोदेव तत्व को जाता है और बड़ोदेव तत्व गुरु तत्व होता है। जिस प्रकार बड़ोदेव तत्व ने अपना देवों के गर्भ को कर्पण करके उनमें से आगाछा को निकाल करके कृष्ण को वासस्थान किया था, उसी प्रकार रूपा जी पूरा विश्व में निर्वित है। तो कृष्ण भावी ये जो आगाछा है इस आगाछा को निकाल करके सविशेष वाणी का स्थापन किया। कृष्ण उनका विशेषता है, वो निर्विशेष नहीं है। उस विशेषता का उन्होंने स्थापन करके उन्हें बहुत सारे कुछ व्यवस्था में दिए। और इस विशेषता का अगर हमें रखना है तो हमारा भी दुख कार्य करना पड़ता है, लंगर हमें भी चलाना पड़ेगा। जब तक लंगर चलाएंगे नहीं तब तक कौशल नहीं हो सकता है और जब तक कौशल नहीं होगा तब तक उपजाऊ भूमि बन नहीं सकता है। उपजाऊ भूमि बनाने के लिए लंगर चलाना आवश्यक होता है। रूपा जी इनको करके दिए, इसलिए बड़ोदेव तत्व बहुत गंभीर विषय है। चैतन्य चिंतामणि पांच श्लोक के द्वारा बड़ोदेव तत्व निश्चित किया है। पूरा गोलोक से लेकर के पाताल तक बड़ोदेव तत्व भरा है। कहां भी जाओ, गोलोक में जाओ वहां भी बड़ोदेव है, मथुरा में जाओ वहां भी बड़ोदेव है, वैकुंठ में जाओ वहां भी बड़ोदेव है, माई जगत में तीनों विष्णु लोग है वहां भी बड़ोदेव है, पाताल में जाओ वहीं भी कुछ बड़ोदेव है। इसका किसान भी नहीं है जो बड़ोदेव तत्व नहीं है। और बड़ोदेव तत्व का काम ही होता है कर्पण करना, और कर्पण के द्वारा आगाछा को निकाल करके शुद्ध शिष्य समला जैसे हम लोग का है ना पंक्ति चंद्र से मलयुग समला शिष्य समला करके बंदी माधव की चुराया है कोई शिष्य समला अगर करना है तो बड़ोदेव का लंगर हर व्यक्ति को अपना कंधा में उठाना पड़ेगा और कर्पण करके शुद्ध भक्त का डालना पड़ेगा। हरे
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
Thank you.
प्रभुचरणानंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। आज के तारीख में ये जो शुभ अवसर के अंदर ये जो कृष्ण कृपा मूर्ति ये जो डिवाइन ग्रेस हम बोलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा सोचकर बताने की कोशिश करता हूँ। ये भक्तों के जीवन में देखा जाता है श्रील प्रभुपाद के जो डिसाइपल थे दो दिन पहले इसे गवर्नमेंट को बता रहे थे एक भक्त तो ऐसे उनके प्रभावित हो गए थे। श्रील प्रभुपाद एक बारी जो पानी पी रहे थे कैसे पानी पी रहे थे एक ग्लास में ऐसे ऊपर करके पानी पी रहे थे उसको देख के वो प्रभावित हो गए और भक्त बन गए। और दूसरा एक और भक्त एक बारी प्रवचन में होता था तो वहां पर साथ में रिपोर्टर के साथ प्रसंग था तो उस समय वो कुछ संतरे खा रहे संतरे हाथ में रखे संतरे खा रहे संतरे खाते खाते उनके जो तीन है तीन जो है तो मुड़ के उधर दिन था तो डायरेक्टली पूछते थे उसके अंदर डायरेक्टली जाके गिरता था तो पूरा देखते रहे उसके बाद बोले वो जो जर्नलिस्ट जो था अगले दिन बस बने क्या बने कि ये देखें। देखेंगे ये जो मामूली प्रसंग जो है आप अगर हम करेंगे तो हो सकता है कल हम लोग संतरा वगैरह लेके जाके प्रचार करने की कोशिश करेंगे ऐसा प्रैक्टिस भी करेंगे होता है इसमें क्या है ये कृपा जो कृष्ण कृपा मूर्ति क्या मतलब है तो जैसे जैसे चैतन्य चरित्राम समय बताते हैं ये तो संकीर्तन जो प्रचार करने का दायित्व तो है लेकिन वो कौन कर सकता है वो कर सकते हैं जिनके अंदर कृष्ण कृष्ण शक्ति है जो शिला प्रभात के अंदर है तो उनका जो अध्यात्म जो भौतिक जैसे कार्य जो हमारे नजरों में दिखता है वो भी आध्यात्मिक शक्ति से होता है। तो ये जो कृपा जो है कृष्ण कृपा मूर्ति जो है तो कई बार हम लोग भूल जाते हैं ये रूटीन में बोलते रहते हैं। और एक और बार पिछली बार हम बेराम कृष्ण ठाकुर थे इधर जब सैन फ्रांसिस्को में जब वो लेक्चर दे रहे थे तो लेक्चर के बाद एक व्यक्ति जो जो प्रसंग में सुन रहे थे हाथ उठा के बीच में बोले कि मैं दीक्षित हो सकता हूँ तो प्रभुपाद बाकी जो शिष्य होते साथ में वो सब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए ये क्या बीच के अंदर बीच में कैसे बोले तो लेकिन श्रीला प्रभुपाद ने उनसे पूछा हाँ हो सकते हो लेकिन हमारे दो प्रश्न का उत्तर देना होगा। पहला प्रश्न कृष्ण कौन है तो व्यक्ति थोड़ी देर सोचा फिर बोला कृष्ण भगवान है। फिर दूसरा प्रश्न प्रभुपाद ने बोला ये सही है दूसरा प्रश्न तुम कौन हो तो फिर से व्यक्ति ने थोड़ी देर सोचा फिर बोला मैं भगवान का सेवक और श्रीला प्रभुपाद ने बोला सही कल आप देखिए कौन से सेव बस तो इनके कृपा ये है कृष्ण का कृपा कैसे दे रहे हैं। और कई बार भक्त लोगों ने पूछा जैसे हम लोग भगवत गीता में पढ़ते हैं प्रभुपाद जी हम लोग इस जन्म में यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं ना पिछले जन्म का जो जो बाकी था उससे आगे बढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी सीधा बोल रहे हैं मैं तो जीरो का अकाउंट पूरा अकाउंट मैंने दिया इस बारे तो ये है डिवाइन ग्रेस कृष्ण कृपा मूर्ति। तो आज की शुभ अवसर के अंदर हम प्रभुपाद जी से ये प्रार्थना करते हैं कि ये जो कृपा मूर्ति का हमेशा ध्यान रहे हमारे अंदर और
असुर कृष्ण भगवान ने दो बात के बारे में कुछ बताएंगे तब तक दयालु बोल दो यहाँ पर दयालु भगवान ध्यान दे अच्छा अच्छा कहा है हमारे पास कुछ है नहीं प्रभुपाद के लिए कहने के लिए
थोड़ा बहुत सुना है प्रभुपाद के विषय में, कहने का प्रयास करते हैं। हम लोग प्रभुपाद के सेव भाव के बहुत निकट हैं, 30-40 साल ज़्यादा नहीं है। इसलिए श्री प्रभुपाद ने क्या किया है कि अभी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आगे आने वाली पीढ़ियाँ, आगे आने वाला समय, आगे आने वाले वर्ष श्री प्रभुपाद के कार्यों को, उनके आंदोलन को पूर्ण रूप से प्रकट करेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि प्रभुपाद ने हाँ कुछ ग्रंथ लिखे, बहुत मंदिर बनाए, शिष्य बनाए, हम लोग गुणगान करते हैं, लेकिन प्रभुपाद का आंदोलन इतना ही नहीं है। केवल इन कार्यों को करने के लिए प्रभुपाद नहीं आए थे। प्रभुपाद ने जो किया है वो तो आगे आने वाले 10,000 सालों में पता चलेगा। जो प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों में लिखा उनको व्यवहारिक तौर से कैसे समाज के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, ये आगे आने वाले समय में हम देखेंगे। प्रभुपाद ने हम सब पर कृपा करने के लिए अपने जीवन में बहुत कष्ट हुए। इसका एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि प्रभुपाद कहाँ कहाँ गए केवल एक जीव को बचाने के लिए। ये शुरुआत की अवस्था थी और जो श्री प्रभुपाद के शिष्य थे उन्हें भी कुछ इतना ज्यादा ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने एक कार्यक्रम श्री प्रभुपाद के लिए रखा और ये कार्यक्रम रखा जहाँ प्रभुपाद जाकर प्रवचन देंगे। प्रभुपाद सन्यासी हैं और ये कार्यक्रम रखा गया एक ऐसे स्थान में, अमेरिका में एक ऐसे कुछ स्थान होते हैं जहाँ पर लोग केवल नग्न रहते हैं। एक ऐसा क्षेत्र वो अपना बंद क्षेत्र रहता है, उसमें वो केवल नग्न रहते हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं। अमेरिका के में लोगों में कुछ ऐसे विचित्र बातें करने की आदत होती है, कुत्तों को प्यार करना, बिना कपड़ों के घूमना इत्यादि। प्रभुपाद को नहीं पता था। प्रभुपाद से कहा गया कि प्रभुपाद आपके लिए कार्यक्रम है, प्रभुपाद ने कहा ठीक है, जाएंगे प्रचार करना है। प्रभुपाद वहाँ पहुँचे और जैसे ही प्रभुपाद ने देखा कौन से स्थान में आए हैं, प्रभुपाद का स्तर हमेशा ऊंचा रहता था। आपने देखा होगा प्रभुपाद के कोई चित्र देखिए, कोई वीडियो देखिए, प्रभुपाद ऐसे हमेशा उनकी छड़ी और उनका स्तर ऊंचा रहता था, लेकिन वहाँ प्रभुपाद ने सर नीचे कर लिया। पूरे समय प्रभुपाद का सर नीचे रहा, सर नीचे रख के प्रभुपाद ने प्रवचन दिया। प्रवचन होने के बाद प्रभुपाद ने पूछा कोई प्रश्न है और उसके बाद कहा अब हम लोग यहाँ से तुरंत जाएंगे। बात यहाँ पे समाप्त नहीं हुई, ये तो कोई भी कह सकते हैं कि ठीक है इसमें क्या बड़ी बात है। इसमें बड़ी बात ये हुई कि जब प्रभुपाद और भक्त चले वहां से तो उनके पीछे पीछे एक नवयुवक वहां से आ गया, जिसने प्रभुपाद को देखा, प्रभुपाद को सुना, भक्तों को देखा और जो ऐसी अवस्था में था। आप मान लीजिए कि जिस ऐसे स्थान में रहने वाले व्यक्ति की क्या चेतना हो सकती है, लेकिन वो एक व्यक्ति ही उनके पीछे पीछे आया। आगे चलकर उसने प्रभुपाद से दीक्षा ली, संन्यास लिया, बहुत बड़े सन्यासी बने, बहुत प्रचार किया सारे जगत में। उनका नाम नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सा प्रचार किया, ऐसी ऐसी जगहों में जहाँ संभव नहीं था बहुत प्रचार किया। तो देखिए प्रभुपाद ऐसी जगह पर गए केवल उस एक व्यक्ति को, बाकी कोई वहां से नहीं आए, लेकिन उस एक व्यक्ति को उस स्थान से निकालने के लिए प्रभुपाद ने उस किसी को स्वीकार किया। नहीं तो सन्यासी के लिए ये कोई अवस्था नहीं है कि ऐसी जगह पे जाकर वो प्रवचन दे, बातें करें, लेकिन प्रभुपाद ने किया। इसलिए प्रभुपाद ने अपने जीवन में ऐसे कई कार्यों को किया जो साधारण दृष्टि से सही नहीं लगते, एक सन्यासी के लिए, एक साधु के लिए, ये प्रचार की दृष्टि से भी। लेकिन प्रभुपाद ने किया। जब अमेरिका में गए थे, आप सब जानते हैं कि जिस फ्रिज में वो प्रभुपाद का प्रसाद रखा जाता था उसके पास में ही कुत्ते को खिलाने वाला मांस रखते थे, उसी फ्रिज में, वहीं पर प्रभुपाद ने सहन किया। रात के समय उठाकर उनको बाहर फेंक दिया गया, प्रभुपाद ने सहन किया। कोई नहीं था। प्रभुपाद हर हफ्ते जाकर जहाँ से जहाज जाता है वहां पर देखा करते थे कि अगला जहाज भारत में कब जा रहा है। इतना परेशान वहां पर, लेकिन विश्वास, फिर उनका विश्वास हो जाता है भगवान ने भेजा है। इसीलिए जाते समय ही उन्होंने लिखा था, नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ से नाचो, काशते रह पुतली जो तुम नचाओ से। जैसे गुड़िया को नचाते हैं लकड़ी की, पता नहीं था वैसे ही नचा दी। प्रभुपाद ने अपने उदाहरण से हम लोगों को सिखलाया है कि समर्पण क्या होता है और इसकी क्यों आवश्यकता है। तो अगर हम प्रभुपाद को कुछ अर्पण करना चाहते हैं आज के दिवस पर, प्रभुपाद के आविर्भाव दिवस पर हम चाहते हैं कि हम कुछ अर्पण करें, तो केवल कुछ शब्द काफी नहीं है। कुछ कह देना, कुछ उनके लीलाओं को कह देना काफी नहीं है। सही दृष्टि में प्रभुपाद को सही ऑफरिंग वो होगी कि हम लोग जो उनकी शिक्षाएं हैं उनको किस तरह अपने जीवन में पूर्णतः उतारने का आज से प्रयास करें, ये सही दृष्टि में अवसर है। और ये वचन हम शिला प्रभुपाद को दें कि हाँ, आज तक मैंने केवल सुना आपकी शिक्षाओं को, पढ़ा बुक्स में, उतार नहीं पाया जीवन में, लेकिन आज प्रयास कर वचन देखा, तो हमारे लिए सही ऑफरिंग यही होगी। कम से कम हम अपने स्तर पर तो ये कह सकते हैं, हमारे लिए यही सही ऑफरिंग है कि हम श्री प्रभुपाद से आज प्रार्थना कर रहे हैं कि आज तक आपकी शिक्षाओं का पालन कर नहीं पाए, लेकिन आज से प्रयास करेंगे कि आपकी शिक्षाओं का पालन करें, ताकि आपने जो आंदोलन प्रारंभ किया है उस आंदोलन को समझ सकें, आपकी कृपा को समझ सकें, आपकी करुणा को समझ सकें और हृदय में कृतज्ञता का भाव ला सकें, जिसके द्वारा आप प्रसन्न हों और फिर हम आपके आंदोलन में, आपका आंदोलन क्या है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा, तो आपके आंदोलन में हम एक निमित्त बन सके, बस यही प्रार्थना आज हम श्री प्रभुपाद से कर सकते
हैं। अभी हम चलेगा बोले कृष्ण प्रधानमंत्री इस शब्द के ऊपर हमने सुना और अर्जुन कृष्ण प्रभु ने भी बताया कि किस प्रकार से प्रभुपाद का केवल प्रचार नहीं था, उनका आचरण, उनका रियलाइजेशन था। प्रभुपाद इंडस्ट्री में गए, कोई संपत्ति वालों ने उनको उड़ा दिया, ऐसे पॉसिबल नहीं है। आपको नोबल प्राइज मिला है? नहीं मिला है। नहीं, ऑथर ठीक है, इतने किताबें बेचे हैं। पुलिस का अवार्ड मिला है? तो नहीं मिला, नहीं मिलेगा। तो प्रभुपाद ने अचानक प्रश्न पूछा, सर यहाँ पर अर्थक्वेक होते हैं क्या? फिर प्रभुपाद अचानक पूछने लगे वो लेडी से, तो लेडी बोले हाँ होते हैं, लेकिन ये जो हमारी बिल्डिंग है ये अर्थक्वेक प्रूफ है। तो उसने भी प्रश्न पूछा कि आपको क्या लगता है हर समय कोई व्यक्ति कृष्ण के बारे में सोच सकता है? ऐसे कैसे संभव? प्रभुपाद ने कहा कि आप जब ऑफिस में आते हो तो कपड़ा पहन के आते हो? हाँ, कपड़ा पहन के बने जाए थे। तो जिस प्रकार से आप कहीं पर भी जाने के पहले कपड़ा पहन के रखते हो, उसी प्रकार से कृष्ण के बारे में अपने आप भक्त सोच रहे हैं। देवड़ी को उसके अलग प्रकार से कपड़ा पहने नेचुरल है, उसी प्रकार से भक्त नेचुरली कृष्ण के बारे में हमेशा सोच रहे। ये बात यहां पर खत्म हो। फिर दूसरे दिन सवेरे जब प्रभुपाद के कमरे में नूतन मॉडल थे और सभी भी लोग सोच रहे मानते कि प्रभुपाद ने अर्थक्वेक का बात क्यों नहीं कहा, उसकी समझ नहीं। अचानक जब प्रभुपाद उनके पास बात करेंगे तो फॉर्म मुझे भर के दो, अचानक सबको हिलने लगा, घर हिलने लगा, वो सब वायर हिलने लगी, वैन हिलने लगे, भयंकर आवाज आने लगी। तो प्रभुपाद ने कहा ये क्या है? मुकुंद महाराज ने कहा प्रभुपाद आई थी अर्थक्वेक होते थे बार बार। तो प्रभुपाद ने अर्थक्वेक आराम किया और तुरंत अपने सोफा जो था उसके ऊपर ऐसे रिलैक्स हो गए, हंसने लगे। ऐसी आवाज आती जैसे 1942 में मैं जब कलकत्ता में एकदम शांति से बात कर रहे, 1942 में जब मैं कलकत्ता में था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो आवाज आती थी बहुत बड़े बड़े ट्रेन की और बम की, वैसी आवाज आ रही है। और मुकुंद महाराज देख रहे ये हंस रहे, यहाँ हंस पे बोल रहे हंस रहे। फिर प्रभुपाद ने कहा देखो मैं हंस रहा हूं, असल में मैं अभी कृष्ण को याद कर रहा हूं, अभी मुझे मृत्यु आएगी कितना अच्छा होगा। सभी मुकुल मार देखते हैं, सभी मुझे पता चला कि प्रभुपाद जब कहते हैं आई एम नॉट दिस बॉडी ही मींस ये बराबर उनको एहसास हो चुका है और इसलिए अर्थक्वेक में भी हंस सकते हैं और शांति से बात कर सकते हैं, बम फटते कभी भी शांति से पूरी कर सकते हैं। ये प्रभुपाद प्रभुपाद का जो टाइटल है आचार्य ये सही है। हम लोग प्रचारक होंगे लेकिन हम लोग आचार्य नहीं है, आचार्य बनना है। उसके जैसे हमारे आचरण में भी वो चीजें जो हम लोग बताते हैं दूसरों को, शरीर नहीं है, ये मत करो, वो मत करो, किस प्रकार से रहो, हमारे जीवन में परिवर्तन, ये बात गुरु कृष्ण प्रभु ने बहुत सुंदर तरीके से कही। अभी इसका नाम बताया था मैंने नाम को मेरे ध्यान में
भगवान का गुणगान बढ़ा रहे हैं और जहाँ भी जाएंगे इसको भक्तों
प्रॉपर को इतना आसक्त हो जाते हैं, वो सिर्फ प्रॉपर को बहुत प्रेम करते हैं, प्रॉपर का गुणगान करते हैं और प्रॉपर के बारे में हमेशा गुणगान होता ही रहता है और भगवान की लीला में जितना हमको आनंद मिलता है उससे कहीं ज्यादा प्रॉपर लीला सुनने में आनंद आता है। अगर अभी कृष्ण के बारे में जन्म से होता क्लास होता है तो आधे लोग सो जाते हैं और प्रॉपर के बारे में कोई नहीं, सब लोग जागृत होकर सुन रहे हैं। भगवान की लीला में ही आ सकता है मगर प्रॉपर की लीला में कोई नहीं सुनी, सब जागृत में सुनेंगे की प्रॉपर के बारे में चल रहा है, सब बहुत ताली मार रहे हैं खुशी से, क्लास में भगवान पास भी इतना ताली नहीं बजता है। इसलिए भगवान प्रॉपर का गुणगान कर रहे हैं, हम देखेंगे प्रॉपर लीला में से सार भोजन से अभी सत्तर महाराज के द्वारा हरि को भी प्रॉपर इतना सारा वॉल्यूम से प्रॉपर के प्रॉपर लीलाओं के बारे में तमाम विष्णु महाराज लिखे टीके भी डायरी और लोकनाथ महाराज एक बुक लिखे बक्सी महाराज एक बुक लिखे और प्रॉपर का ऑफरिंग है, जब से प्रॉपर के तब से प्रॉपर का ऑफरिंग का इतना मोटा मोटा बुक था जैसे आज हमने देखा इतना सारा बुक प्रॉपर भारतम से ज्यादा प्रॉपर का लीला का बुक है तो पढ़ते ही रहेंगे आनंद से। तो क्योंकि भगवान क्यों प्रॉपर का गुणगान बढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर भगवान का गुणगान बढ़ा है, प्रॉपर को भी अपना गुणों के बारे में नहीं सोचते, भगवान का गुणगान इतना की है कि भगवान भी प्रॉपर का गुणगान करते हैं और भगवान के साथ भगवान से ज्यादा तो प्रॉपर के बारे में बुक थे और भगवान के लीला सुनकर जैसे आनंद बढ़ता है वैसे प्रॉपर के लीला सुनते ही हमारे अंदर आनंद बढ़ता है। उनके लीला भी ऐसे जैसे भगवान के लीला है सुनते हमको बहुत आकर्षक लगता है, तो प्रॉपर का लीला भी बहुत आकर्षक है। मैं सुनेंगे प्रॉपर सर एक प्रॉपर नेचर में बुक पढ़ रहा था, वो बुक में लिखा है कि प्रॉपर एक बार जा रहे थे ऐसे उनको कोई कुकीज दिया वो कुकीज खा रहे थे, वो खा के आधा खाए थे पीछे एक डिवोट को दिए ये लोग प्रॉपर अपने महाप्रसाद देते थे सबको अपने शिष्यों को, तो भक्त भी है बोले ये बुरा आदमी झूठा करके दिया हमें कैसे खाऊं, तो क्या कि कुकीज को उल्टा पकड़ के पीछे का भाग खाए वापस प्रॉपर को दी ये लोग आपका, तो प्रॉपर ऐसे गुस्से से दे दो उनको तो वापस मुंह में डाल दे डर के, और वही है मुकुल महाराज है बाद में जाके सन्यासी बने, तो ऐसे प्रॉपर का हरेक किला बहुत आकर्षक रहता है। एक बार प्रॉपर ट्रेन में जा रहे थे तो उनके पीछे उनके लिए प्रसाद लंच का टाइमिंग रहता है, उस टाइम के लिए उनको प्रसाद देना पड़ता है, तो ट्रेन में बैठे थे कि सब लोग डरे हुए थे अभी टाइम हो गया प्रॉपर उनके प्रसाद लोग कहाँ से देंगे, तो वो लोग सब चिंतित थे तो प्रॉपर देते ही टाइम हो गया, एक बार दिया प्रॉपर बोले वरिज मैदान, तो वो लोग बोले प्रॉपर आज भूल गया, तो प्रॉपर कुछ बोले नहीं, फिर खिड़की से हाथ निकाल के एक समोसा वाला जा रहा था समोसा निकाल के खा लिए, बोले साधु नेवर गो हंग्री प्रॉपर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, हम उनके लिए थे प्रॉपर पानी पिएंगे या वो सूख के डस्टबिन में डायरेक्ट डाल सकते हैं, तो वो सब देख के इतना आकर्षक क्यों लगते हैं क्योंकि वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, इस दुनिया के नहीं थे प्रॉपर, हम देखते थे बहुत सारे लीलाओं में जैसे प्रॉपर एक बार बैठे थे उनके मसाज कर रहे थे, मैसेज किया एक फोटो था भगवान गौर वालों के साथ पसंद ले रहे प्रॉपर, बोले कब मैं जाऊंगा इधर मुझे बहुत जल्दी मुझे जाना है इधर, यानी प्रॉपर वहीं से ही थे और वहां जाने का वो सोच रहे थे, इससे पता चलता है कि भगवान भगवान राम से प्रॉपर को भेजा गया है। और भी प्रॉपर एक बार एयरपोर्ट में उनके पिछले लोग को कुछ झगड़ा कर लिया कोई पुलिस से, तो उनको कमरे में प्रॉपर के साथ कुछ धोनी रखती थी बंद करके, तो प्रॉपर वहाँ बहुत गुस्से से बोले मैं बोला कृष्ण को मुझे यहाँ मत भेज इस दुनिया में, मगर जबरदस्ती भेज दी प्रचार करने के लिए, यानी इससे पता चलता है कि प्रॉपर आध्यात्मिक जगत से महाराज बता रहे थे कि प्रॉपर एक बार सभी इंफॉर्म नहीं हुआ था कभी थे वो प्रभाकर, तो वो बैठे जन्माष्टमी का सुबह सुबह प्रॉपर जप कर रहे थे और वो प्रॉपर रो रहे थे और उनके गले में हार था, तो इतना फ्रेश हार था, तो उनके पीछे आके पूछे कि स्वामी जी आपको सुबह सुबह हार कौन पहनाया और आप क्यों रो रहे, तो कुछ बताया नहीं, नहीं मैं नहीं बताऊंगा, बहुत प्रयास बोले कि बताइए बताइए बताइए, तो प्रॉपर बोले ठीक है किसको आप बताइए मैं बताऊंगा, सुबह सुबह कृष्ण आए थे और मुझे आलिंगन की और अपना हार पहना दी गई, तो ये सुनकर बोले बहुत खुश हो कि भगवान आए थे प्रॉपर जी का उनको हार पहना दी गई। और एक बार भी वो सीधे देखे कि जन्माष्टमी से प्रॉपर जाके अपने लिए जाता हमें बहुत नाच रहे और रो रहे बहुत जोर से नाच रहे, तो ट्रांस में चले गए थे और इतने देर तो उठाने वक्त उठे नहीं बहुत एक बार फिर वो बाहरी पहुंचे सुनाए, तो इस सबसे आपको पता चलता है कि प्रॉपर कोई साधारण व्यक्ति इस दुनिया से नहीं थे और वो प्रचार इसलिए नहीं किए कि मुझे फेमस होना है मेरा नाम बढ़ेगा या तो बढ़ेगा, अगर फेमस होना है किसको तो थोड़ा भी प्रॉब्लम आएगा तो हम छोड़ देंगे उस चीज को, अगर हम क्लास दे रहे हैं और कुछ ही तरीके एक व्यक्ति उठ के चला जाएगा सब लोग चले जाएंगे हमको मूड ऑफ हो जाएगा क्यों क्लास दे रहा कोई सुन नहीं रहा है सब कम लोग है हमको बुरा लगता है, मगर प्रॉपर ऐसे ऐसे जगह में शिपियों के साथ रहते थे उधर और सब लोग रसगुल्ला खिलाते थे उन लोग का प्लेट धोते थे उनको खिलाने के बाद, ये सब से हम देख सकते हैं प्रॉपर कुछ अपने लिए नहीं कर रहे थे दूसरों को उद्धार करना था इतना दया था, कभी कभी तो कुछ लोग लाइन में खड़े थे तो देखिए बस के लिए या दुकान किरण दुकान के लिए तो देखिए बहुत बस आपने आंसू आता था कि ये लोग कितना अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहे, शरीर के लिए सब कुछ कर रहे और ये लोग आत्मज्ञान के अभाव के द्वारा ये लोग कैसे फंसे हुए दुनिया में, पर बहुत बस क्रांति में आंसू आता था, इतना दया था उसके अंदर। हम उस दया के वजह से ही पटपट में उसका पढ़ेंगे अगर ध्यान से तो बहुत हम ऐसे समझा रहे जैसे कि पिता जी एक बेटे को समझा रहे, आप समझ जाओ अच्छा काम करो ऐसा कि भगवान का भक्ति करो, आप भगवान का भक्ति करो, हर एक पटपट में ऐसे ही लिखते हैं। तो ये गोपाल का दया की अगर हमारा अंदर दया नहीं है तो ऐसा जो भाव का प्रवचन भी आप सुनेंगे तो ऑडियंस के लिए नहीं देते प्रवचन या कुछ आकर्षक का प्रवचन नहीं देंगे, वो ऐसे मान बन करके अपने सुन में रहेंगे प्रॉपर सुन अपने सुन में रहेंगे प्रवचन देंगे, ऐसा अट्रैक्टिव क्लास है सर 45 मिनट का क्लास रहता है मगर कितने लोग उसमें भक्त बन जाते। तो प्रॉपर एक बार एक दिन व्यक्ति था मंदिर के सामने, वो प्रॉपर तो प्रॉपर आए नहीं थे उस मंदिर में, व्यक्ति था वो गंदा फटा हुआ कपड़ा पहनता था एकदम गंदा रहता था, जैसे हमारे मंदिर में एक व्यक्ति ऐसा था बहुत गंदा कपड़ा पहन के आता था रोड पे सो जाएंगे, तो ऐसे बाहर मंदिर के बाहर घूम रहता हूँ तो वो मंदिर आने लगा तो भक्त लोग को भगाते थे बाहर जाओ बाहर जाओ, तो कुछ देर के बाद प्रभुपाद आए तो प्रॉपर मॉर्निंग वॉक में गए थे तो वो देखा कि स्वामी जी आए और सब लोग जैसे मॉर्निंग वॉक में चले गए वो मंदिर के अंदर आ गए और आने पर जैसे बब्बा के साथ तो दरवाजा खुलने लगा ऑटोमेटिक, तो बोले कौन है वही तो नहीं है वो व्यक्ति कि वो गंदा व्यक्ति अंदर आ गया, तो देखा वो अंदर आ गए बब्बा को देखे आलिंगन कर दिए जोर से, तो आलिंगन करके बब्बा उनको सर को समाये चिंता मत करो, तो फिर वो सो के चले गए। फिर जाने पर कुछ दिन के बाद वो अच्छा भक्त बन गए, फिर वो जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे थे तो सारे भक्त लोग बस खोलते ही वो इतना बुक बैग में डाल के लेके चले गए, बोले रुको 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 इतना पता नहीं है प्राइस क्या है फ्री में लेके आ जाएगा सबको, वो लेके गए कुछ देर के बाद खाली बैग लेके आए तो सब लोग बोले गए सब फ्री में बांट के आ गया लगता है, फिर वो देखे बैग में इतना सारा पैसा था तो बोले अरे आपने पैसे से बांटा इतना जल्दी इतना बुक तो कोई नहीं किया था सर आपने कैसे प्रचार किया, बोले प्रॉपर का फोटो पीछे निकालते बोलते थे प्रभुपाद सेव मी प्रभुपाद सेव मी ऐसे ही बोलते थे, ये देखिए इतने लोग सारे लोग सारे बुक्स लेंगे तो इसलिए हम अगर प्रभुपाद से कनेक्ट रहेंगे तभी भी वो शक्ति हमारे अंदर भी आता है और हम प्रचार करते तो इतना प्रभावकारी क्यों होता है कि लोग भक्त क्यों बनते क्योंकि हम प्रभुपाद से कनेक्ट है, आप बोलेंगे नहीं हम भगवान से कनेक्ट है इसलिए हमको शक्ति आ रही है, भगवान से कनेक्ट तो सब लोग बहुत लोग कृष्ण को जानते हैं भारत में तो सब लोग पूजा करते हैं मगर हमारे जो इस्कॉन वाले प्रचार करते हैं प्रभावकारी क्यों है क्योंकि हम प्रभुपाद को कनेक्ट है। अगर प्रभुपाद का देखिए सन्यासी भी हो अगर इस्कॉन से वो बाहर चले जाते हैं उनको कोई नहीं पूछता है कोई दंडक भी नहीं मारते सन्यासी होती वो भी मैं देखा सन्यासी ऐसे छोड़ के चले गए वापस ऐसे भी कोई उनको पूछ नहीं रहा कोई दंडक नहीं मार रहे थे घूम रहे, मतलब ऐसा क्या चीज है कि सन्मा कहाँ जाता है किसी प्रभुपाद की वजह से, अगर हम सोचेंगे मैं प्रभुपाद दिया इतने लोग भक्त बन गए तो नहीं, अगर हम प्रभुपाद का तात्पर्य नहीं पढ़ के देंगे तो हमारा कौन सुनेगा, प्रभुपाद का तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे तो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी है बहुत लोग इतना सारा संस्था है ये बापू वो बापू उतना बहुत कहते हैं हजार लोग इकट्ठा करते हैं इनका लोग इकट्ठा करना बड़ी बात नहीं मगर लोगों को उनके हृदय परिवर्तन करना भक्त बनाना ये क्यों हो पा रहा है क्योंकि हम प्रॉपर को पटपट पढ़ते हैं, अगर प्रॉपर का तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे तो अगर प्रॉपर से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे हमारा कोई वैल्यू ही नहीं, जैसे एक टीवी लगा हुआ है और उसका प्लग निकाल देंगे तो टीवी नहीं चलेगा क्यों क्योंकि हम टीवी से आकर्षित रहते हैं मगर हमको मालूम नहीं कि उसका कनेक्शन किधर है हम पावर कहाँ से है, अगर इसको ट्राई करना है तो ट्राई करके देखिए अगर आप इसको से बाहर निकल जाइए अगर कोई सेपरेट लेवल वाइस में आएंगे कोई पूछते हैं हमको नहीं इसको छोड़ दिया कोई वैल्यू नहीं देता है भले ही 15 साल से 20 साल से क्यों हमारा पावर प्रॉपर क्या है प्रॉपर से कनेक्ट रहना मतलब प्रॉपर का तात्पर्य पढ़ना और उसके हिसाब से जीवन यापन करना और जो भी नियम बताए उसको पालन करना है प्रॉपर से जुड़े रहना ही हमारा उसमें शक्ति है नहीं तो हमारा अपना कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए हम प्रॉपर कितने दयालु थे कि वो सबको पूरा दुनिया का प्रचार किए और अभी भी प्रचार कर रहे हैं और आगे प्रचार करते रहेंगे तो
श्रीमद् प्रभुपाद को भक्ति ग्रंथ जो बोलते हैं उनको उनके गौड़िया मठ में जाकर वो प्रवचन करते हैं भगवत के ऊपर और वो सुनकर उनके जो बाकी जो भक्त थे गौड़िया मठ के उन्होंने उनको भक्ति ग्रंथ का किताब दिया था। एक्चुअली मैं बोलने वाला था जो सब पॉइंट्स भैरव प्रभु ने बोल दिया दूसरा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो प्रभुपाद का जो सहनशीलता है पौधन उसके ऊपर मैं बोलने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा और ये बोलने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ ताकि वो उनका एक 0.01% ही मेरे में आए या हम सब में आए तो हमारा काफी हद तक भक्ति में प्रगति हो सकता है. इसके लिए मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बोलना चाहता हूँ. प्रभुपाद जब ही गृहस्थ आश्रम में थे उन्होंने भगवद्गीता का काफी बड़ा हस्तलिखित तैयार किया था, मतलब मैनुस्क्रिप्ट हाथ से लिखकर. और जब भी एक उनको एक मद्रास के एक उद्योगपति ने वो छापने के लिए तैयार हो गए थे, चलो अभी मैं आपका ये भक्ति भगवद्गीता का जो आप लिखे है टीका लिखे है मैं छाप देता हूँ, तो जब भी उन्होंने ढूंढने की कोशिश की तो उनको मालूम पड़ा उनके पत्नी ने या कुछ वजह से वो किताब अभी नहीं मिल रहा है हस्तलिखित. पूरा 600-700 पन्ने का उन्होंने लिखा था हस्तलिखित, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, उन्होंने फिर से वो भगवद्गीता का टीका फिर से लिख दिया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सहनशीलता, और कभी भी वो दूसरे को कुछ गुस्सा नहीं करते थे. जैसे कि उनके अनेक शिष्य जैसे बताया कि हिप्पी थे, उनको कुछ आता नहीं था कैसे बर्ताव करने का, वैष्णव आचार किया उनको कुछ मौसम नहीं था, फिर भी प्रभुपाद ने उनको अच्छी तरह से सिखाया वैष्णव जी के और उनको संन्यास के पद तक लेके गए. तो अनेक उदाहरण आपको अगर प्रभुपाद के नाम पर पढ़े आप तो नजर आएंगे. प्रभुपाद का जो टॉलरेंस है वो हाइएस्ट लेवल पर था. एक बार उनके शिष्यों ने एक लेक्चर अरेंज किया था एक जगह पर एक हॉल लेकर, और उसको कुछ $10 से कुछ कीमत लगी थी टिकट के लिए लोग आए. तो जब भी देखा गया तो बहुत कम लोग आए थे, फिर भी प्रभुपाद ने उनको शिष्यों का ये नहीं बोला कि आप क्या क्या प्रचार किया, कोई नहीं आया. तो उसने बोला कोई बात नहीं, आपने देखा नहीं कि पीछे शिव ब्रह्मा नारद मुनि सारे वैष्णव आगे बैठेंगे. और इस तरह उन्होंने अपने शिष्यों का हौसला बढ़ाया कि उसके ऊपर टीका नहीं किया था, आप प्रचार नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो. तो ये प्रभुपाद का जो विशेषता है ये सबसे महत्वपूर्ण है कि वो हमेशा सहिष्णु थे, और उनको मालूम था कि यहाँ पे सारे बद्ध जीव है, तो बद्ध जीव को हमें भगवान के भक्ति में लगाना है. और इसलिए वो हमेशा कभी भी गुस्सा नहीं करते थे, हमेशा उनको मालूम है क्या करना है और उसी मार्ग पर वो चलते रहते थे. ये उनका ये जो विशेष गुण है सहनशीलता टॉलरेंस ये सबसे महत्वपूर्ण है. ये भगवान प्रभुपाद से और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ ये मुझे थोड़ा बहुत प्राप्त हो ताकि मैं उनकी प्रभुपाद की सेवा में लगा रहा हूँ, और ये मेरी प्रभुपाद से प्रार्थना है. हरे
कृष्ण. हरे कृष्ण. थोड़े ही समय में प्रभुपाद को पुष्पांजलि अर्पण करके अभी ये भी आप अभी मैं करुणा मंत्र मंडली डॉक्टर कमल भी